ओम परमपिता परमात्मा से मेधा बुद्धि की कामना करते हुए मंत्र पाठ करेंगे। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भवताम सर्वेषां एकदा पुनः स्वागतम्। अस्माभिः ही चर्चा चर्चिता। कस्मिन् विषये चर्चा चर्चिता ही है? इत्यादि अनेक केषु विषयेषु पदार्थेषु च अस्माभिः चर्चा ही चर्चिता। अग्रे या चर्चा वर्तते सप्तमः पाद द्वितीय अध्यायस्य अंतिमः पाद। अत्र किं वर्तते? एका कथा वर्तते, आख्यानमिति। विश्वामित्रः सुदास पैजवनस्य पुरोहितो बभूव। स वित्तं गृत्वा विपाटसतुद्रौ सम्मेदौ आययौ अनुययौ इत्रे। विश्वामित्रः नदीस्तुष्टाव गाधा भवतु। ऐसा कथा वर्तते कि विश्वामित्र सुदास पैजवनस्य, पिजवनस्य अपत्यस्य पुरोहितो अभूत्। तस्य पार्श्वे दक्षिणारूपेण तेन बहुधनं प्राप्तं। तं धनं नीत्वा विश्वामित्रः तत्र विपाट शतुद्री नदी नामानि सन्ति, तो तत्र स आगतः। अन्य च तेन दृष्टं भो बहुजलं वर्तते अत्र तु, कथं पारयेयम् इति। तेन पुनः नदीनां स्तुति कृता। तेन विश्वामित्रेण नदीनां स्तुति कृता, अर्थात विश्वामित्र नदी तुष्टाव गाधा भवतु। गाधा नाम न्यूनं जलं युक्ता भवन्तु इति। आप जो हैं कम जल वाली हो जाएं तो तस्य एसारिक भवति। तत्र पंचदश मंत्रः तत् संभाव्यते तस्मिन् सुक्ते सन्ति। तो मुख्य विषय अद्य तदेव वर्तते अस्मिन् पादे। तो विश्वामित्रः कः और नदी का इति जिज्ञासा वर्तते। तेन छन्देन, अर्थात कस्मिन् छन्दसि, कः देवः, कुत्र च घटना वर्तते। तेन बिना तो एवं प्रतीयते, सामान्येन इतिहासो वर्तते इति खलु। तो चलामः अग्रे। रात्रि तो भूत। हाँ, तो अत्र किं वर्तते? वांग नामानि सन्ति। तो वांग नामानि कियन्त सन्ति? केन कंठीकृतम्? उच्चार्य
श्लोकाधारा इडा गौहु गौरी गांधर्वी गंभीरा गंभीरा मंत्रा
शीघ्रेण उत्पलुत गत्या।
श्लोकाधारा इडा गौहु गौरी
गांधर्वी गंभीरा गंभीरा मंत्रा मंत्रा देनी वाशी वाणी वाणी जीवाणी वे भारती धारी धमनी नाड़ी मेडी नेरे सूर्य सरोते निवाद वग्नु बदमे काको जीवा को सही एवं अधिकम कालम न नियोजनी। अस्तु तरु सम्यक अस्ति। अनेन उक्तम तो कंठीकृतम् एषा। अन्ये अपि कंठीकृतम् स्यु इति आशास्महे। तो वाग नामानि उत्तराणि सप्तपञ्चाशत् वाग नामानि उत्तराणि अग्रे अस्माभिः वक्तव्यानि। वाक् कस्मात्, अर्थात वाक् केन हेतुना अस्य शब्दस्य अत्र उच्चारणे प्रवृत्तिर्भवति। वचे वच परिभाषणे अस्मात् धातो वाक् इति सिद्ध्यति। उच्यते यासा वाक्, उच्चार्यन्ति शब्दा अनया सा वाक्। तत्र सरस्वती इत्येतस्य नदीवत देवतावच्च निगम भवन्ति सरस्वती इत्येतस्य सरस्वती वाग्नाम सुपठितम् तस्य देवतावत और नदीवत सरस्वती एका देवता सरस्वती नाम नदी तो निगमा मंत्रः अर्थबोधकः भवन्ति तद यद देवतावत उपरिष्टा तद व्याख्या समय यदा देवता नामानि संति तान उपरिष्टाद व्याख्यास्याम तो अत्र किम अभूत नमस्ते तद यद देवतावद देवता इव वर्तेते तद उपरिष्टाद व्याख्यास्याम अग्रे तेसाम व्याख्यानम करिष्याम अत्र तु केवलम नदीवाची वर्तते तस्य व्याख्यां कुर्म देवता भविष्यति तो देवता अस्माकं शरीरे अपि भविष्यति देवता भविष्यति तो किमपि दास्यति किमपि तस्य गुणः स्यु पदार्थः स्यु तस्य सहयोगिनः स्यु एवमेवम् अस्माकं शरीरे अपि स वर्तते इयं मंत्रः प्रदीयते इयम् सुष्मे भी विशिखायु अरुजत सानु गिरिनाम तविशे भी ऊर्मे भी पारावत घनीम अवसे सुवृक्ति भी सरस्वतीम आविवासे में धीति भी इयम् सुष्मे भी सुष्मे भी नामे सुष्म नामे बलम नाम सुपठितम् केन कंठीकृतम् ओजह पाज अग्रे शव तव तर कथम एवं न स्यात् कंठीकरणम स्यात् तो सुष्मे भी बलई विशिखा इव विशिखा नाम भवति कमल नाल हिंदी भाषायाम कमलस्य दंड जैसे उसको तोड़ने में बच्चे को भी बल नहीं लगाना पड़ता वो इतनी कमजोर होती है कि बच्चा भी अगर कमल नाल को तोड़ना चाहे तो तुरंत तोड़ देता ऐसे किया और टूट गई तो वैसे ही इस नदी के लिए पर्वत की बड़ी बड़ी चोटियां ऐसे ही हैं जैसे कमल नाल को कोई बच्चा तोड़ रहा हो ऐसी तीव्र गति से चलने वाली नदी है यम सुष्मे भी विशिखा इव अरुजत अरुजत नाम भिन्नवान त्रोटितवान सानु गिरिनाम सानु नाम है शिखा चोटी गिरिनाम नाम है पर्वत नाम पर्वत के ऊपर से बहती है तो पर्वत को प्लेन करती चलती है बराबर बना देती है तो नदी नाम है सरस्वती इदानीम तो लुप्ता या कुत्र भी दृदृश्य थे केचित वदन्ति अत्रापि वर्तते अत्र यह गुरुकुलम आसीत ना आचार्य रविन्द्र महाभागस्य तिलोरा तत निस्सरति ते वदन्ति केचित वदन्ति तत्र कुरुक्षेत्र अग्रे वर्तते एकम स्थानम तत निस्सरति केचित वदन्ति कि दक्षिण भारते गुजरात प्रांते विक्रम मोदस्य गृह सरस्वती नदी पार से वर्तते इति अनेके साम मते इदानीम न जायते सरस्वती कुत्र तिष्ठति ऐसा भी वदति कि सरस्वती तत्र वहती तो सरस्वती नदी कहाँ है अब कोई बताना थोड़ा मुश्किल है अन्य च किम करोति गिरिनाम तवेशी भी नाम है बलई और उर्मी भी तरंगई तो बल के द्वारा तरंगों के द्वारा ये जो सरस्वती नदी है पर्वत की चोटियों को तोड़ देती है हाँ तो महत बलई एकम सामान्य बलम वर्तते तवेशी भी नाम है महत बलई पारावत घनिम पारावार घातनिम इस किनारे को भी तोड़ देती है उसको भी तोड़ देती है अवसे सुविक्ति भी और अवसे नाम रक्षार्थम सुवृक्ति भी नाम सुष्टु भी युक्ता भी अच्छी प्रकार स्तुतियों के द्वारा या युक्तियों के द्वारा। युक्ति क्या होगी, सरस्वती जब नदी हर बार बाढ़ आती है तोड़ती है तो युक्ति क्या लगाओगे, पत्थरों की बांध बना दो तो सरस्वती भी अपना पत्थरों को काटती रहेगी धीरे धीरे, हमारा कुछ ही नहीं।
पहाड़ी चोटियां तोड़ देगी तो पत्थरों में क्या,
ये भी बात ठीक है, पर मैदान में उसकी शक्ति कम हो जाती है, बिखर जाती है। जितनी तीव्र गति से वहां पानी बहता है यहाँ तो फैल जाती है, फैलने के जो फैल गया तो व्यक्ति की 10 कामों में उड़ जावा वैसी शक्ति कमजोर हो जाती है। सरस्वती आविवासे में धीति भी, आविवासे में नाम है पूजा में, विवाशति पूजा कर्मा परिचर कर्मा, तो आविवासे में नाम है पूज्य में, धीति भी नाम है कर्म भी, बुद्धि द्वारा कर्म भी पूज्य में। तो ऐसी सरस्वती देवी की हमें पूजा करनी चाहिए नदी की। कैसे पूजा करेंगे नदी की, कि ऐसा है मर गए हैं तो काश्या मुक्ति, एक वचन किसी ने पाखंडी ने बना दिया कि काशी में मरने से मुक्ति होगी, तो कोई मरे नहीं तो काशी में जाके मरते हैं वहां सारे, और मरने के बाद काशी में ले जाएंगे, कोई नहीं मरेगा तो काशी में मारेंगे उसको, तो क्योंकि वचन बना दिया किसी ने, तो ये मूर्ख लोगों का वचन है कि काशी में मरने से मुक्ति कैसे होगी, इतने पाप किए हैं उसको रोरा नरक में जाना ही पड़ेगा, है ना, तो वो कैसे उसकी मुक्ति हो जाएगी, तस्मात काश्याम न मुक्ति, मुक्ति तो हो जाएगी, इतनी गंदगी है कुछ दिन में वैसे ही मर जाएगा वहां गंगा में नहाएगा तो, ऐसे तो आजकल हो सकते हैं क्योंकि काश इतनी बुद्धिहीन सरकार है कि जहाँ घाट है ना घाट वहीं शौचालय खोले हुए, भाई 2-4 किलोमीटर दूर कर ले पर जो घाट है ना घाट वहीं आके पड़ते हैं। तो अब तो मोदी जी आ गए ना, मैं मोदी जी की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो पहली सरकारों की बात कर रहा हूँ। तो कैसे उसकी पूजा है, नदी की पूजा क्या है, नदी को स्वच्छ रखना ही उसकी, हाँ मरने के बाद वहीं कहीं गांव वाँव में जला दें उसको, ना गंगा में लिए जाए ना उसकी हड्डी डाले, हड्डी डालने से क्या वो स्वर्ग में चला जाएगा, पर यह है कि वेद पढ़ते नहीं, बुद्धिहीन है, परंपरा से पाखंडियों ने अपनी वृत्तियां बनाई हुई हैं, तो उसके कारण ये परंपरा अंध परंपराएं चल रही हैं। फूल वूल जो भी है वो क्यों डालें गंगा में, वो भी तो गंदे करते हैं गंगा को जाके।
मोदी नहीं रोकेगा ना,
मोदी नहीं रोकेगा तो
लगा नहीं सकते ना,
धीरे धीरे होगा, बुद्धिमान व्यक्ति है, नहीं होगा तो कोई वैदिक व्यक्ति आएगा, सारी समस्याओं का समाधान तो तभी होगा जब कोई वेद के विद्वान बैठेंगे राजा बन के। सरस्वती नदीवाची है, कोई भी नदी है सरस्वती, तो नदीवाची है, विशेष नदीवाची नहीं, वो तो मैंने इतिहास में थोड़ी बातें बता दी थी, बाकी सरस्वती तो केवल सरसवान और सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती वो भी सरस्वती है, अर्थात सरस क्या है, श्री गतव ज्ञान गमन प्राप्ति तद्वान सरसवान, वैसे तो पुल्लिंग में महर्षि दयानंद सरसवान होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने संन्यास पौराणिकों से लिया, क्योंकि जब तो पौराणिक थे तो इसलिए परंपरा से सरस्वती, क्योंकि वो विद्या की देवी मानते हैं, तो विद्या का देवता कौन है, सन्यासी होता है सारा कुछ पढ़ने के बाद, तो इसलिए वो परंपरा से आ गया पुल्लिंग शब्द तो सरस्वान है, इसलिए कोई आगे सन्यास ले तो सरस्वान रखना चाहिए। नदी पर की है इन्होंने कारण किया, बाकी तो घटनाएं हैं, घटना जहां भी घटती हो वहां घटा लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपके अंदर तो बहुत जल्दी घट जाएगी। सुष्ममिति बल नाम है शोषयति सतह, सुष्म क्या है, बल नाम है, क्योंकि तोड़ फोड़ में जिनकी रुचि है तो उनमें तो जल्दी घट जाएगी। शोषयति सतह, हाँ तो आध्यात्मिक दृष्टि से जो असुरों को तोड़ना चाह रहे हैं तो आप तो ऋषि बनेंगे ना, अपना नाम सार्थक तभी होगा, तो आप में तो घट जाएगी। गौतम है ऋषि न्याय दर्शनकार, तो कोई दर्शन और बनाने की अपेक्षा रहेगी आपसे। शोषयति इति सतह, क्योंकि ये सोख लेती है तोड़ देती है, शोषयति बलम उत्पादयति नाशयति इति वा। विषम विष्यतेर भेदन कर्मणो, विष भेदने धातु से बना है, वृद्धि कर्मणो वा वर्धयति भेदयति इति वा विषम, या तो बढ़ाता है तो जब उसका जल फैलता है तो बढ़ जाता है, और उसके बीच में कोई आ जाता है तो उसका क्या कर देता है, तो नदियां क्या करती हैं, जो नदियों के किनारे रहे उनको पता है कि बाढ़ जब आती है तो अपना रास्ता बना लेती है भेदन करके। जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी प्राचीन देखा है और अब की बार देखा है, जो वहां अथाह जल आया था और ब्राह्मण की दृष्टि में वो क्या था, महान ओघ था। ओघ मतलब बाढ़, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। तो उस बाढ़ से पहले हम गुरुकुल कांगड़ी को देख के आए थे और उस बाढ़ के बाद देख के आए, तो जो रास्ते में जितने भी टापू थे, मतलब गुरुकुल कांगड़ी कांगड़ी गांव से नहीं दिखता था और वो सीधा बिल्डिंग दिखती है, क्योंकि जितने पेड़ वेड़ थे पूरा ही रास्ते में तो भेद थी, भिनती थी वो भेद। है इसके लिए आया ना, जो मंत्र में सुषमे भी विशखा, विशखा के लिए आया है। विशखा कमल नाल है, विष तो अर्थ भेदन अर्थ में है, भेदन कर्म है। खनती विशखायु खनती, जैसे विशखा है वैसे ही तोड़ती है, जैसे वो तोड़ने वाला है, जैसे व्यक्ति किसी चीज को तोड़ता है ऐसे ये तोड़ती है। तो विशखायु खनती विशखा, या नदी सरस्वती। और आगे चलो, जैसे वो विशखा है किसी चीज को कमल नाल है, कमल लाल क्या है, टूटती भी है और बढ़ती भी है और तोड़ती भी है। तोड़ती किसको है, वो रोगों को तोड़ती है, क्योंकि कमल जो है पोषक होता है शरीर के लिए। ऐसे ही जैसे वो टूटती है ये भी टूटती है, नदी भी टूट जाती है, आज यहाँ से निकली धारा, आज यहाँ से धारा निकली यहाँ से, और जो बीच में आता है उसको भी तोड़ देती है। तो ये उपमा दे रहे हैं इसको, तो विशखायु जैसे वो है ऐसे ही ये है। और ये कह किसको तोड़ती है विशखायु, किसको करती है, सानु पर्वत की गिरिणाम, सानु पर्वत की चोटियों को ये तोड़ देती है। विश्यति भेदयति इति, और इसलिए ये है, और विश्व भी यही काम करता है, ये भी तोड़ फोड़ करता है शरीर में। सानु समुच्चरितम भवति, पर्वत की चोटी को पर्वत की चोटी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अलग से दिखाई देती है। और सम उन्नतम इति वा, या वो झुकी भी होती है कई जगह, कभी देखा होगा पर्वत ऐसा झुका होता है, उनसे उच्छरित से अर्थ निकल जाएगा। जिन्होंने देखा है जो पहाड़ी इलाकों में गए, पर्वत खूब ऐसे झुका होता है, लगता है गिरेगा, जो उत्तराखंड खासकर जहाँ गंगोत्री आदि जाते हैं तो ऐसी घाटियां कि गिरेगी हमारे ऊपर, और गिरती भी रहती हैं। बाबा रामदेव जी भी पीछे 5 घंटे फंसे रहे, पर्वत की चोटी गिर गई थी, 400 लोगों के साथ में गए थे तो 5 घंटे तक जाम रहा रास्ता। वो तो खुल गया, हम जैसे होते तो शायद 5 दिन बंद रहता है ना। तो पर्वत की चोटी, जिन्होंने पर्वत देखे हैं उन्हीं को ये समझ में आएगा, और इसको समझने के लिए पर्वत देख के आओ। महद भी उर्मी भी पारा अवत घनिम पारावर घातनिम, महद भी उर्मी भी, तवेशी भी का अर्थ किया महद भी, महान तरंगों के द्वारा, और इस पार को भी तोड़ देती, इस किनारे को भी तोड़ देती है, उस किनारे को भी तोड़ देती है नदियां। पारम परम भवती अवारम अवर, जो दूसरा किनारा है वो पार हो गया, जिस पे हम खड़े हुए हैं वो अवार हो गया। सुप्रवृत्ता भी, पार जो है दूर होता है, और अवर झाम खड़े हैं वो होता है, दो किनारे हैं, एक किनारे पे खड़े हैं तो दूसरे में कैसे जाएंगे तैर के, नदी भेंट ले सकती है। सुप्रवृत्ता भी स्तुति भी, अच्छी प्रकार की जो स्तुतियां हैं उनके द्वारा, सरस्वतीम नदीम कर्म भी, अपने क्रियाओं से, ये ना कि बैठे बैठे जाके वहां पूजा कर ली और फूल उल चढ़ा दिए, कर्म ऐसे करें कि नदी पवित्र रहे। विदेशी लोग बड़ा ध्यान रखते हैं अपनी नदी को, माता नहीं कहते फिर भी सारे काम माता मान के ही करते हैं, उसकी पूजा इतनी करते हैं कि वहां नदियों में कोई गंदगी प्राय नहीं मिलती, जैसे मैंने कई देशों में जाके देखा है।
इस मंत्र का देवता कौन
है? इसका देवता नदी है। और आगे चलते हैं, उदक नामानी उत्तराणी 100, 100 जल के नाम है, जल के नाम है अर्थात जलों में 101 प्रकार के गुण हैं। अगर आप जलों का ठीक से प्रयोग करना जान जाएं तो जीवन में कोई रोग हो नहीं सकता, क्यों, आप वही सर्वौषधम, ये ब्राह्मण का वचन है, जल जो है संपूर्ण औषधि है, उसकी उस अन्य किसी औषधि की अपेक्षा नहीं है। किंतु आप इस जल की बात ना करें जो अन्ना सागर वाला है या फिर सरकार का आता है या जो शुद्ध किया जाता है, ये जल तो आप है वही विषम, ये तो विष का काम करता है, पक्की बात है, ये जो मशीनों से शुद्ध करते हैं ये करते हैं। ये उस जल की बात है जो वर्षा ऋतु में इस समय जो अगस्त नक्षत्र में जो गिरता है वो, या जो झरने का जल है, शुद्ध नदियों का जल है, वो तो औषधि है। बाकी तो सरकार पता नहीं क्या सफेद सफेद पाउडर डाल के भेजती है, वो तो विष ही है सारा, तो वो औषधि नहीं हो सकता जल, इसलिए सब लोग रोगी हो रहे हैं उसको पी के। बिल्कुल उसी को करना चाहिए, शास्त्र में उसी का विधान है, नित्य जल पीना चाहिए। भले ही इतना ज्यादा ना हो कि रोज 5-4 गिलास पी ले, तो आधे गिलास सुबह उठ के उसी को पीना चाहिए। अब इतना जन नहीं तो क्या करें, 1 साल तक खराब नहीं होता, मैंने जयपुर में प्रयोग करके देख लिया है। मटके में आप उसको छान के मटके में रख लीजिए, जब 2-4 बरसात हो जाए वो खराब नहीं होता। सुबह आधा गिलास उसी को उठ के पीजिए जो जलपान करते हैं, तो वो सोम का काम करता है। आजकल उसकी तो कीमत ही नहीं है, ये बाजार वाले बोतल वाले की कीमत हो गई है। बारिश का पानी आ रहा है तो अच्छा, सीधा नहीं आ रहा ना, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आगे चलो, गंगा जल खराब नहीं होता, पर गंगा में क्या क्या चीजें मिल गई है वो तो खराब ही है, नहाने लायक भी नहीं है वो, पीने लायक की तो छोड़ो, कई जगह ऐसी हालत होगी। बनारस में जाके देखो गंगा का जल कहाँ है, हरिद्वार से जो ऊपर है जहाँ से गोमुख से निकल रही है वहां तो ठीक है, गंगोत्री के शौचालय कहाँ जाते हैं, जो महाराज गंगा की पूजा करते हैं वो कहाँ, सारा कार्यक्रम कहाँ चल रहा है। चलो आगे चलो, उदकम कस्मात 29 तिशत है, जो गीला कर देता है, उदक का काम ही गीला करना है। और नदी नामानी उत्तराणी 37 नाम है, 57 नदियों के 37 का कितना 37। नद्य कस्मात नदना भवंती शब्दवत्य, ये नदना भवंती है, नद अव्यक्त शब्द है, हमेशा शब्द करके चल रही है, और शब्द क्या है हमें पता नहीं लगता, हम पहचान नहीं सकते क्योंकि हमने वो व्याकरण पढ़ा ही नहीं है। जो नदियों का शब्द है, पशुओं के शब्द हैं, कुकुर की जो आवाज है, गीदड़ों की जो आवाज है, सिंह की जो ध्वनि है, इसका व्याकरण है ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं लगता कहना क्या चाह रहे हैं। ये भी इनकी भी एक भाषा है भगवान की दी हुई, उसका व्याकरण पाणिनि ने बनाया नहीं है। तो नदना भवंती शब्दवत्य बहुलम आसाम न घंटुकम वृत्तम आश्चर्य में प्रधान्य ने, बहुलम आसाम नदीवाची नाम नदी नाम नाम न घंटुकम गौण प्रयोग वर्तते वृत्तम आश्चर्य में प्रधान्य ने, आश्चर्य है कि कहीं इनकी प्रधान रूप से स्तुति हो, गौण रूप से इनकी स्तुति है। तत्र इतिहासम आचक्षत, कि नदी जो है वो गौण रूप से ही है, बाकी कोई ना कोई अन्य मुख्य देवता वहां होना चाहिए, कहीं कहीं प्रधानता में है। न घंटुकम का अर्थ है गौणम, हाँ गौण रूप से ही है नदियां। इसका अर्थ ये है कि नदी बिचारी गौण है, इंद्र नहीं बादल बरसाएगा तो नदी सूख जाएंगी, जैसे राजस्थान की नदी सूखी हुई है, तो गौणी है, जो जिसके आश्रय से रहता है वो हमेशा गौणी होता है। ऋषि किसी के आश्रय से नहीं रहता, इसलिए ऋषि मुख्य होता है, बाकी तो सब उपजीवी ने हैं, एक दूसरे के सहयोग से जीवित रहते हैं, तो जो दूसरे के आश्रय से रहता है वो गौण ही होता है। राजस्थान में तो समुद्र भी था, इंद्र ने सुखा दिया, ये रेत कहां से आया, समुद्र से ही तो आया, और हिमालय पे भी एक बार समुद्र गया हुआ था, वो भी सूख गया, नहीं ऊपर तक गया हुआ है।
हिमालय की उत्पत्ति बता दी, समुद्र के द्वारा हुई, ये चीज बताते हैं कि वहां पर समुद्र था या हिमालय,
वो समझने के लिए अभी बहुत समय चाहिए, शतपथ ब्राह्मण में पूरा विज्ञान है। तत्र इतिहासम आचक्षते अस्माभिः अत्र इतिहासम इतिहास उच्चते, हम एक कथा बता रहे हैं नदियों के बारे में कि नदियां क्या हैं, कैसे काम करती हैं। विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र नाम ऋषि, सुदास सुदास नाम व्यक्ति नाम है, और पैजवनस्य नाम पिजनवस्य अपत्यम पुरोहित बभू तस्य पुरोहित पुर एनम ददति इति पुरोहित, उसको आगे रखते हैं तो पुरोहित हो गया यज्ञ कराने के लिए, विश्वामित्र सुदास पैजवन का पुरोहित बन गया कि मैं आपको यज्ञ कराऊंगा। अब यज्ञ कराऊंगा तो वर्षा ज्यादा हो गई, अब वो क्योंकि विश्वामित्र जी नदी के उस पार रहते थे और ये सुदास पैजाम जो है ना वो इस पार रहता था। अब दक्षिणा वक्षिणा खूब मिली, अब लेके जाने लगे, जाने लगे तो वर्षा भी उन्होंने नहीं कराई थी तो बाढ़ आ गई नदी में। अब बेचारे विश्वामित्र जाएं कैसे, है ना, गाय भी थी साथ में, धन संपत्ति भी थी, कुछ खाने पीने के भी खूब सामान हो गए, तो नदी भेंट में ले लेगी, तो अब क्या करें, तो क्या करें, तो बेचारी नदी की स्तुति कर लें। किसी की स्तुति करते हैं तो स्तुति क्या है, उसके गुणों को धारण कर लेते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं तो बेचारा मान जाता है। किसी से हम कुछ मांगते हैं तो पहले निवेदन के बिना कोई नहीं देता, माता भी नहीं देती, और तो कौन देंगे, माता भी बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बार बार रोता है चिल्लाता है। तो इसलिए निवेदन करना चाहिए, ईश्वर से भी मांगना चाहिए। मोदी जी ने भी कहा कि भाई लोग कह रहे थे कि आप मांगो मत, मोदी ने कहा भी मांग के तो देखें, जनता से मांगेंगे तभी तो देगी। तो जनसंघ से उसने कहा 300 से ज्यादा दो, तो जनसंख्या और ज्यादा दे दी, 400 की कल्पना करती तो जनसंख्या शायद और ज्यादा हो जाती सीटों की। तो उन्होंने उनको भी विश्वास नहीं था कि जनता इतना दे देगी। अब जनता का अर्थ है देने वाली, वो तो देने के लिए बैठी, कोई मांगने वाला ही नहीं है। तो इन्होंने कहा नदी जी मेरे को रास्ता दीजिए, क्योंकि मेरे पास गाय भी हैं, घोड़े भी हैं और दक्षिणा है, दक्षिणा डूबनी नहीं चाहिए, नहीं तो यज्ञ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ का एक विभाग दक्षिणा भी है। यज्ञ का प्रयोजन तो पूरा हो गया, वर्षा तो हो गई, किंतु यज्ञ दक्षिणा से पूरा होता है और वो दक्षिणा वापस नदी ले ले तो ये तो ठीक नहीं है। तो वो स्तुति कर रहे हैं 15 ऋचाओं के द्वारा, इसमें 2-3 दी हैं। विश्वामित्र कौन है, सर्वमित्र, सभी का मित्र है। ध्यान देने की बात है, सर्वे सर्वाणी मित्राणि अस्य इति सर्वमित्र, और सर्वेषां मित्र सर्वमित्र, या तो सभी उसके मित्र हैं या वो सबका मित्र है, ये विश्वामित्र, और वो साथ में ऋषि भी है, ध्यान देने की बात। और सर्वम संश्रितम, वो सब जगह संगत है, सब जगह गया हुआ है, वो एक जगह नहीं है, सब जगह है। और सुधा कल्याण दान, सुदास जो कहा था ये कौन है, कल्याण दान, इसका दान भी सामान्य नहीं था, दक्षिणा भी बहुत भारी दी हुई थी और रथों में और गाड़ियों में भेजी हुई थी दक्षिणा, तो कितनी दक्षिणा होगी आप समझ लो, आगे मंत्र में आएगी बात। और पैजवन पिजवन से पुत्र, और पिजवन पुनः स्पर्धनीय जव है, जिसकी गति बड़ी तीव्र है, स्पर्धा के योग्य है। वह मिश्री भाव गति, या उसकी गति जो है ना मिली हुई है, कई गतियों के साथ में लेके चलता है। स वित्तम गृहीत्वा, स विश्वामित्र वित्तम धनम गृहीत्वा ग्रहणम कृत्वा विपाट सुतुद्रो संवेदम आययम। स विश्वामित्र विपाट नामना नदी और सुतुद्र नामना नदी, संवेदन नाम है संगम है, दोनों का संगम हो रहा था, रास्ता भी वहीं से था, तो वहां वो आ गया। अनुयायु इत्र, जिसकी गति मिश्री भाव नहीं है, अर्थात अतिशय गति है, उसके साथ में किसी की गति नहीं है, उसकी तीव्र गति इतनी है कि कोई उसको पकड़ ही नहीं पाता है, वो है। स्पर्धनीय तो स्पर्धा के योग्य है, स्पर्धा के योग्य तो वो होता है जिसको पकड़ा जाए, भाई दो ब्रह्मचारियों में स्पर्धा है, मतलब आसपास ही चल रहे हैं उसको पकड़ लेगा, दो धावक दौड़ रहे हैं एक आगे चला गया तो उसको पकड़ा जा सकता है, किंतु इसको पकड़ा नहीं जा सकता। स वित्तम गृहीत्वा धनम गृहीत्वा विपाट सुतुद्रो संवेदम आययु अनुययु इतरे अन्य ऋत्विजा तस्य पश्चात आगतवंतः। स विश्वामित्र नदी स्तुष्टाव, स्तुति आकर्षित, नदी की स्तुति की गाधा भावता, हे नदियों आप क्या हो जाओ, कम जल वाली हो जाओ, ताकि मैं अपना घोड़े गाड़ी को लेकर निकल जाऊं, अब इतना जल है कि इसमें डूबने की 100% संभावना है, नहीं तो विश्वामित्र जैसा ऋषि नदी की स्तुति क्यों करेगा, है ना, अर्थात पानी बहुत अत्यधिक है इसलिए मैं पार नहीं हो पाऊंगा, डूबने की 100% संभावना है, इसलिए आप क्या करो अपने जल को कम कर लो। अब देखो नदियां क्या कहती हैं, वैदिक नदियां बोलती भी हैं, ये सबसे बड़ी बात है, नदियां उत्तर भी देती हैं, समझती भी हैं, मुझे किसने बनाया ये भी जानती हैं, ये वैदिक नदियां सामान्य नहीं है, और यहाँ की तो नदी बोलती नहीं जो पृथ्वी पर चल रही है, तो वेद की नदियां तो वार्ता भी करती हैं और ऋषि जैसी बुद्धि रखती हैं, समझदार हैं, और ये नदी हम भयंकर बाढ़ में घुस जाएं और फिर कहें कि गाधा भावता है तो क्या करेंगे, वहां जाके अभी घुसे और वहां जाके मिलेंगे थोड़ी देर में, तो कुछ देर में क्या होगा, गाधा ही हो जाएंगे, साथ में मृत्यु हो जाएगी, तो ये नदी हमारी नहीं सुनेंगी, पर विश्वामित्र की सुनेंगी, ये ध्यान देने की बात, अगर आप विश्वामित्र बन गए तो आपकी सुनेंगे। आगे देखो कितना सुंदर सूक्त आ रहा है, वेद मंत्र में ही बात है। तद यत विवत उपरिष्टात तद द्विवचन में भी स्तुति है और बहुवचन में भी स्तुति है, मतलब दो नदियों की भी और अनेक नदियों की भी है। द्विवचन मतलब जहां दो नदियां हैं वहां द्विवचन हो गया, और जहां अनेक नदियां हैं वहां बहुवचन हो गया। किसमें है वो मंत्र चला गया, वो नदीवाची था ही नहीं, वो तो वांग वाणी वांग नाम में था, ये तो नदी वाला तो ये है। तद यद द्विवत उपरिष्टा तद व्याख्यास्यामः, जो द्विवचन वाली दो नदियां हैं वहां तो हम क्या करेंगे आगे करेंगे। वो अथ एतद बहुवत उसकी यहां कर रहे हैं, जो बहुवचन वाला है उसकी हम स्तुति यहां कर रहे हैं। रमध्वम वे वत्से सौम्याय, अब ये विश्वामित्र नदी के किनारे पे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है और क्या कह रहा है वो बता रहे हैं। रमध्वम वे वत्से, मे वत्से सौम्याय वत्से, मैं सौम्य हूं। पहली बात है नदी किसकी बात को सुनेंगी, जो सौम्य है। कठोर वचन को तो नदी कठोरता नदी में और तीव्र गति से आती है, उसको समाहित कर लेती है, इसलिए नदी किसकी बात को सुनती है, जो सौम्य है, जो सरल है, और सोम जिसने सोम रस का पान किया हुआ है या जिसने सोम याग किया हुआ है या कराया हुआ है उसी की बात को सुनती है। तो रमध्वम, रमध्वम नाम है उपरमध्वम, भाई रुक जाओ, क्यों रुक जाओ, सोम्याय मे वत्से, मेरी पहले वचन को सुनो, क्योंकि चलते चलते तो वाणी सुनी नहीं जाती, रुकने के बाद ही सुनी जाएगी, और रुकने के बाद इतने में निकल ही जाऊंगा, इतने सुनेंगे है ना। तो उपरमध्वम मे वत्से सोम्याय, सोम्याय नाम है सोम संपादिने, रितावरी, रितावरी नदी नाम में पड़ा हुआ है, किसको नदी नाम याद है सुनाइए, नदी नाम आनी पूरे याद करो, ऐसे आधे आधे से काम नहीं चलेगा। तो रितावरी नाम है नद्य, भाई ज्यादा देर मत ठहरो, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं कोई कमजोर तो नहीं बूढ़ों की तरह धीरे धीरे पार करूंगा, एक क्षण ही ठहर जाओ, बस मेरे पास इतने तीव्र घोड़े हैं कि एक क्षण में हो जाएगा। है नहीं है तो इनकी बात मानो। रितावरी, रितम नाम है उद्गम, और यद तेसु वर्षते थी रितावरी है, तो रितावरी नाम है नदी। आचार्य जी का स्वागत है। उप मुहूर्तम एव किंचित क्षण कालम एव तिष्ठतु प्रसिंधुम अच्छा बृहति, सिंधु नदी नामवाची है, प्रसिंधुम अच्छा बृहति महति मनीषया, बृहति मनीषा, मैं बहुत अधिक बुद्धि से बड़ी स्तुतियों से आपकी स्तुति कर रहा हूँ। अवश्यु, अवश्यु नाम है अवरक्षणे तम इच्छति अवश्यु, अर्थात पारगमनशील, मैं इसके पार होना चाह रहा हूँ। कुशिक से सुनु, और मैं सामान्य नहीं हूँ, मैं कुशिक का पुत्र हूँ। कितनी इसमें योग्यता है, ऋषि है, सोम का जिसने संपादन किया है, सोम जिसके पास में है, सोम याग कराया है, या जो सरल है, पहली बातें होगी। और वो सामान्य नहीं है, कुशिक मेरा पिता है, कि मैं सामान्य आपसे सामान्य व्यक्ति नहीं हूं कि आप मेरी बात ना सुने, क्योंकि मैं विशिष्ट व्यक्ति हूं, इसलिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, सुनना चाहिए। तो क्या इनकी व्याख्या देखते हैं। उपरमध्वम मे वत्से सौम्याय सौम्य संपादिने रितावरी रितवत्य उदकवत्य, जो रितम उदक नाम सुपठितम। तो उपरमध्वम मे वत्से, मेरे वाणी को सौम्य संपादिने, जो है इस मेरी वाणी को सुन के आप उपरमध्वम, उपरता बहुत है, मेरी वाणी को सुन के आप अपनी गति को कम करो। सौम्याय, क्योंकि मैं सामान्य नहीं हूं, सोम संपादिने, मैं अभी सोमयाग करा के आया हूं, और उसी के कारण तुम्हारे अंदर जलाया नहीं सूखी हुई पड़ी थी, तो इसलिए मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कारण उस सोमयाग के कारण ही आप जलवाली हुई हैं। अर्थात नदी के नाम क्यों हैं, जो अव्यक्त शब्द करती हैं, अव्यक्त शब्द कब करती हैं, जब उनमें जल होता है, सूखी नदी तो कुछ भी नहीं करती है। कितनी बार तो आ गया ये जिसे बरसात होती है, तो वृष्टि यज्ञ में सोम का ही प्रयोग होता है। अप्तोरिया में नाम ही उसका है, अप्तोरियाम अपाम त्वरणम गति पातनम यस्मिन यागे वर्तते इति अप्तोरियाम है। वर्षा कराना है अप्तोरियाम का। सोम के तो सात विभाग हैं जिसमें एक अप्तोरियाम अंतिम है। आगे कह रहे हैं ऋतम इति उदक नाम प्रतिरितम भवति, सब जगह गया हुआ होता है। कोई भी संसार का ऐसा पदार्थ नहीं है जहाँ उदक ना हो, अर्थात आप तत्व ना हो। जहाँ ये जो टेबल है जिसपे लैपटॉप रखा हुआ है इसमें भी उदक है, नहीं तो जलेगा नहीं। आप तत्व है तभी चीजें जलती हैं जिसमें आप तत्व होता है, तो सभी जगह गया हुआ है। मुहूर्तम एवई अयनई अवनईरवा, एक क्षण के लिए क्या करो आप गति को रोको, तो अवनई इसका भी अवरक्षण धातु से है और अयनई अयगत धातु से, तो अयनई अवनई मुझे पार जाने के लिए मेरी रक्षा के लिए क्या करो, एक क्षण ही ठहर जाओ क्योंकि मैं बड़ा बूढ़ा तो हूं नहीं जो धीरे धीरे चलूंगा। मेरे पास रथ है और मैं रथ से तुरंत घोड़ों को तैयार करूंगा, क्षण में ही पार हो जाऊंगा, फिर आप अपना फिर अधिक जलवाली हो जाना। मुहूर्तो मुहु ऋतु अर्थात केवल एक क्षण, बिल्कुल ऋतु मतलब एक प्रकार से गमन, जैसे कुछ बोला इतने ही क्षण। ऋति गतव धातु जैसे गति होती है ना किसी चीज, कोई चीज प्रारंभ हुई बस उतने काल के लिए आप रुक जाओ। ऋतु अर्थे गतिकर्मण, ये गतिकर्म है कि बस अपनी गति को क्षण के लिए ही आप रोक लो। मुहूर मूढ़ काल है, जितने काल में व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, मूड कभी भी हो सकता है, क्षण में हो जाता है, व्यक्ति मूड हो जाता है और क्षण में खुश हो जाता है, तो इतने ही काल के लिए आप रुक जाओ। यावत अभीक्षणम चैति, जब तक कुछ देखते हैं इतना ही काल, अभी तक क्षणम अभीक्षणम अभीक्षणम गया हुआ क्षण, जैसे अभी तुरंत कला समझ लो, एक मिनट के आसपास समझ लो बस इतना, उससे भी कम ही मान लो। वैसे तो मुहूर्त जो है वो 24 मिनट का प्राय होता है, 24 कला का होता है, और हाँ 48 का भी है कुछ लोगों के मत में, इनके मत में तो क्षण का ही हो रहा है। हम तो उनके मत में बता रहे हैं जो आयुर्वेद वाले हैं, वो जब वमन कराने के लिए औषधि पिलाई जाती है तो एक मुहूर्त तक उसकी प्रतीक्षा करें, मतलब कोई भी ऐसी कुछ भी ना पानी पिए। अगर अपने आप वमन प्रारंभ हो रहा है तो होने दे, अन्यथा उसके बाद में जो काढ़ा है उस काढ़े को पीना प्रारंभ करें, तो एक मुहूर्त वहाँ 48 मिनट का माना जाता है और किसी की भाषा में वो 24 मिनट का भी माना जाता है। और इनकी दृष्टि में तो एक क्षण ही है, मतलब जितनी देर में आंखें बंद करी और खोली समझ लो, तो ये अलग अलग है। आयुर्वेद का तो 48 मिनट के आसपास है। क्षण क्षणोते प्रक्षुणुतः काल है, अर्थात जो बिल्कुल क्षय हो गया है जिसका, बिल्कुल हिंसित काल है, जो बिल्कुल अभी ऐसे किया बस इतना काल, मतलब निवेदन कर रहे हैं इतने काल में तो कैसे निकलेंगे नदी को पार करके। काल काले तो विमान होता तो फिर नदी को निवेदन करने की क्या जरूरत थी, विमान में उड़कर उड़ जाते, उन नदी की क्या जरूरत थी। काल कालयते गतिकर्मण है, काल क्या है, कल संख्याने धातु से इसका अर्थ इन्होंने गति भी मान लिया है, काल बनता है। और महाभाष्य अनुसार इन्हें कहा पुनः काल, महाभाष्यकार ने जो परिभाषाएं दी हैं वो हमेशा घटती हैं, उनको जरूर याद रखना चाहिए, उसके बिना बहुत सी चीजें खुलती नहीं है। कहा पुनः काल, ये न प्राणी नाम उपचय अपचय लक्षते स काल इत्याहु, जिससे प्राणियों में ह्रास और वृद्धि हो रही है, तो क्षण क्षण में हमारे ये टूट रहे हैं, इनमें निरंतर ह्रास हो रहा है और वृद्धि भी हो रही है, रस रक्त मांस में आदि क्षण क्षण में हो रहा है, बहुत अल्प काल में हो रहा है हमें पता, और ह्रास भी हो रहा है प्रतिदिन।
परिभाषा
जी
वहाँ आगे और पीछे होना ये काल का लक्षण
जी,
जैसे वो क्या नाम होता है रहस्य में
जी जी
पानी डालने वाला
जी जी
वो एक के बाद दूसरा आता है, ये ही काल की परिभाषा
जी जी। हाँ ये भी है कि चक्र चल रहा है एक प्रकार से निरंतर,
एक के पीछे दूसरा आना।
हाँ
तो ये जो अनुक्रम है
जी
यही काल का
लगता है, यही काल है, पर उससे पहचान नहीं हो रही ना
काल की, तो दूसरी कोई पहचान हो ही नहीं सकती, ये बड़ा है एक छोटा है। आज के ही मतलब मैं एक मिनट पहले क्या था, एक मिनट पहले बाद में क्या हुआ, ये काल की ही पहचान ये ही है, इसके अतिरिक्त कोई काल की पहचान।
तो ये जो प्राणी नाम उपचय अपचय से लक्षित वही तो
आएगा, वही
वही बात आ रही है,
क्रम आएगा।
हाँ क्रम तो आ ही रहा है, और काल एक द्रव्य भी है, ध्यान देने की बात है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार काल एक पदार्थ है, केवल कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देता है काल, और ज्योतिष के अनुसार काल दो प्रकार का है, एक प्रकार क्या है कि जो दिखाई देता है जिसको हम जान सकते हैं, अर्थात जो अत्यधिक सूक्ष्मतम नहीं है और जिसको हम नहीं जान सकते उसको उन्होंने त्रुटि माना है, यानी त्रुटि का अर्थ ये मान लें कि जो एक कला है उसका जो उसका भी जो विकला है, और विकला का भी 3000वां हिस्सा, यानी आज की भाषा में समझाएं तो सेकंड का लगभग 3000वां हिस्सा, उसको गणना नहीं कर सकते, ज्योतिष में वैसे है पर वो है, वो दिखा उससे ही कार्य, उससे ही ह्रास, इतने में ह्रास हो रहा है इतने में ही वृद्धि हो रही है, आप समझ ले कि सेकंड का 3000वां हिस्सा उसी में ह्रास हो रहा है और उसी में वृद्धि हो रही है, तो ऐसा इसको समझ सकते हो। आचार्य जी ने भी वो जो बताया वो भी घट रहा है पूरा। तो ये काल है, और काल एक द्रव्य है, और द्रव्य का कोई गुण होता है, ये बात ध्यान देने की है, जो भी द्रव्य है उसका कोई ना कोई गुण है, तो इसके दो गुण है, ह्रास और वृद्धि। तो ये काल है, और काल का जो दुरुपयोग करते हैं जैसे द्रव्यों का दुरुपयोग करते हैं तो वो दंड के भागी भी होते हैं, इसलिए गप्पे मारने में काल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं काल अब भोजन का दुरुपयोग किया तो दंड मिलेगा नहीं मिलेगा, संस्था की वस्तुओं का दुरुपयोग किया तो दंड मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे ही यदि काल को व्यर्थ समय में गवाया तो उसका भी दंड मिलेगा। आप ही जान रहे और तो कोई जान नहीं रहा, भगवान तो दे ही रहा है, क्योंकि जो आपकी उन्नति उस काल में होती वो अवनति में बदल गई, तो ईश्वर की तरफ से तो दंड मिलेगा क्योंकि काल एक द्रव्य है। और आगे चलते हैं, प्र अभी हुयामि सिंधु, मैं इस सिंधु को क्या है ना बुला रहा हूं, सिंधु नाम है, नदी नाम में पड़ा हुआ है। वृत्या महत्या मनीषया, मनीषया नाम है, मनसा ईशया मनीषया, बुद्धि श्रेष्ठतम तत्कालिक बुद्धि के द्वारा इस काल में मुझे बिल्कुल, मैं अपनी सारी वृत्तियों को रोक के उसी में लगा हुआ, उसी का नाम मनीषा है। मनसा ईशया स्तुत्या प्रज्ञया व अयनाय कुशिकस्य सुनु, मैं पार जाने के लिए आपको जो कुशिक मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं, ये कुशिक क्या है? कुशिक राजा बभु ये भी कहेंगे, और महाभाष्यकार के अनुसार कुशिक कौन है? विश्वामित्रस तपस्ते पे अन्य ऋषि न श्याम तत्र भवान विश्वामित्र ऋषि संपन्न, विश्वामित्रस तपस्ते पे अन्य ऋषि पुत्रम न श्याम तत्र भवान कुशिक ऋषि संपन्न, विश्वामित्रस तपस्ते पे अन्य ऋषि पुत्रम न श्याम तत्र भवान गाधी ऋषि संपन्न, वैसे वहां थोड़ा उल्टा है। तो ये विश्वामित्र का जो पिता था कुशिक वो ऋषि नहीं था, किंतु विश्वामित्र ने तपस्या की और वो भी ऋषि बन गया, ये एक विशेष वार्ता। ये नित्य पदार्थ में घट सकता है, विश्वामित्र ने तपस्या की कि मेरा दादा ऋषि नहीं है, वो भी राजा थे, वो भी ऋषि बन जाए तो उसका दादा भी ऋषि बन गया, आगे नहीं की तो नहीं और पीढ़ी भी बन जाती, तो ये नित्य पदार्थों में ही घट सकता है। ऋषि है प्राण, ऋषि कौन है? प्राण है, प्राण ने तपस्या की तो उससे जो संबंधित प्राण था, यानी जिस प्राण के कारण उसका विकास हुआ था, उस प्राण में भी वो मूल ऋषि तत्व आ गया, और फिर उसने तपस्या की जो उससे संबंधित दूसरा प्राण था उसमें भी वो ऋषि तत्व आ गया, और ऐसा होता है। अब विश्वामित्र बन के यदि आप तपस्या करेंगे जो असुर प्राण है वो ऋषि प्राण में बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा, भाई पांच प्राण है, ऋषि प्राण, देव प्राण, पितृप्राण, गंधर्व प्राण और असुर प्राण, ये पांचों आपके अंदर हैं। असुर प्राण भी है, दिखाई देता है, कभी कभी घटनाएं होती रहती हैं, वो असुर प्राण का ही रूप होता है। तो यदि आप विश्वामित्र बन के तपस्या करेंगे तो वह असुर प्राण ऋषि प्राण में बदलेगा, नहीं बदलेगा? अनेकों का बदला हुआ है, स्वामी श्रद्धानंद जी का बदल गया, गुरुदत्त जी का बदल गया, कितने हमारे तो पूर्वजों का सबका ही बदला हुआ है ना, तो बदल जाता है। तो वो नित्य घटना में ही हो सकता है, नहीं तो अगर ऐसे मानेंगे तो ये तो मिथ्या हो जाएगा। अब तपस्या आप करोगे आप सबके पिता ऋषि बन जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये नित्य पदार्थों में ही घटना, तो इससे क्या सिद्ध हुआ, विश्वामित्र यहाँ एक नित्य पदार्थ है। विश्वामित्र क्या है, यहाँ ऋषि है, ऋषि एक प्राण के रूप में है, और वो प्राण किस अवस्था में नदियों से स्तुति कर रहा है, ये एक जानने की बात। वो प्राण नदियों से कब स्तुति करता है, जब वो पार जाना चाहता है। और आचार्य जी वो कौन सा मंत्र है, एक अश्वनवती रिद्धम,
अश्वनवती विद्यते समरवद्धम उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः अत्रा जहीमो असन अशिवान शिवान वयम उत्तरे मार्गवाचा।
ये देखिए, ये अश्वनवती पत्थर वाली एक ये नदी है, ये संसार, इससे आपको पार जाना है। और सखाय वहां सखा, और विश्वामित्र क्या, सबका विश्वामित्र सर्वमित्र, ये आ चुका है। तो इस नदी से आपको पार जाना है, इसका आध्यात्मिक, तो इस नदी में बहुत जल आ गया है, रजस तमस ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो किससे प्रार्थना करेंगे आप, सत्य से प्रार्थना करेंगे। तो सत्य आप रजस तमस को क्या करेगा, दबाएगा। वही नदियां कह रही है कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, जिसने मुझे बनाया है उससे प्रार्थना करो। वो अगले मंत्र में बात, इंद्र ने मेरे को बनाया है, तो आप प्रार्थना किससे करो, इंद्र से करो। और मैं, इंद्र ने तो मुझे बनाया है, किंतु नियंत्रण में मैं अब किसके हूं, सविता के हूं, तो आप सूर्य से प्रार्थना करो। अगर वो कहेंगे तो मैं कल कम जल वाली हो जाऊंगी। ये हमारी आध्यात्मिक घटना में मंत्र घट रहा है, अन्यथा इतिहास सिद्ध हो जाएगा इसमें, तो है ना। तो ये बिना पदार्थों के जाने की विश्वामित्र कौन है, नदी क्या है, ये नहीं तो लोग, हमारे में भी शायद विद्वान कुछ थे आर्य समाज में, नहीं आर्य समाज में भी कुछ विद्वान शायद मानते थे कि भाई ये इसमें इतिहास है, नहीं तो इसमें इतिहास सिद्ध हो जाएगा अगर नित्य घटना हमने नहीं जानी ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से। अब नदियां क्या कह रही हैं, क्रोशते शब्द कर्मण, कुशी को राजा बबू है, क्रोशते शब्द कर्मण, क्रुश आह्वाने रोदने च, और क्रंसतेरवा साथ प्रकाश्यति, और दीप्ति अर्थ में भी है कि प्रकाश्यति कर्मणे, अपने कर्मों से प्रकाशित होती हैं। साधु विक्रोशिता अर्थानाम इतिवा, अथवा अर्थानाम सम्यक्तया साधु रूपेण साधयति आशु कर्माणीति साधु, और तेषाम विक्रोशिता, तेषाम अर्थानाम विक्रोशिता, उन अर्थों को अच्छी प्रकार से बताने वाला, इस मंत्र का क्या अर्थ है, इस मंत्र का क्या अर्थ है, इसका क्या रहस्य, ऐसा बताने वाला कौन है, कुशिक है। और जो उसकी संतान होगी, वेद के अनुसार संतान में गुण आने, तो विश्वामित्र भी ऐसा ही है। अर्थात ये कौन है जो अच्छी प्रकार अर्थों को बताने वाला, ये कौन सा पदार्थ शरीर में है, सत्य के बिना हो नहीं सकता। ये आगे भी बता रहे हैं, नद्य प्रति ऊंचू, नदियों ने उनको उत्तर दिया विश्वामित्र को, देखो भाई विश्वामित्र जी आप पार करना चाहते हैं, बात ठीक है आपकी, किंतु मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इंद्र मेरा बनाने वाला है, या तो आप उससे उसकी प्रार्थना करो, या जो मेरे को चलाने वाला है वो सूर्य है, आप उसकी प्रार्थना करो, वो मुझे कहेंगे तो मैं कार्य करूंगी। अब यहां भी किसी विद्यार्थी से किसी विद्यार्थी को कोई कार्य कराना हो तो आचार्य की अनुमति लेनी पड़ेगी, विद्यार्थी सीधा किसी को आदेश नहीं कर सकता सामान्य रूप से, तो वो यहाँ है। इंद्रो अस्मान अरदत वज्रबाहु, ये विशेषण है इंद्र का, वज्र बाहुभ्याम यस्य, या बाहुभ्याम वज्रेण बाहुभ्याम चरतीति वज्रबाहु, ऐसी भी कल्पना हो सकती है। और यह बाहु में उसकी हमेशा वज्र रहता है, ये ज्यादा ठीक है। और वो कौन है, इंद्र है, उसने क्या किया, असमान अरदत, हमें उसने खोदा है, रद विलेख ने, इंद्र ने हमें खोदा है, क्योंकि वो बादलों को नहीं तोड़ता, तो हम अपना कहां से पानी आता, हम तो सूख जाती। तो इसलिए आप क्या करें, इंद्र की प्रार्थना करें। और अपाहन वृत्रम परिधिम नदी नाम, और अपाहन वृत्रम, उसने क्या किया है, वृत्र को तोड़ा है। और परिधि नदी नाम, और नदियों की परिधि बनाई है कि भाई ये भी इधर भी नदी और इधर भी नदी, बीच में पानी चल रहा है, मतलब दोनों किनारे को बनाया है, नदियों की सीमा को उसने बनाया है वृत्र को तोड़ के। पहले हमने उसने हमें खोदा और फिर वृत्र को तोड़ के उसने हमारी परिधि की निश्चय किया कि यहाँ से ये नदी बहेगी, यहाँ से ये बहेगी, यहाँ ये होगा। देवो अनयत सविता इदानीम कह नयति आसमान समुद्रम प्रति, तो सविता देवा अनयत, अनयत नाम नयति, सविता देवता हमें अब ले जा रहा है समुद्र की ओर। और सुपाणी, सविता कैसा है, जिसके अच्छे हाथ हैं, सविता के हाथ बहुत अच्छे हैं, उससे सुंदर किसी के हाथ नहीं है। वयम प्रसवे या मैं उर्वी, वयम प्रसवे प्रेरणाया, उसकी प्रेरणा के लिए या मैं गच्छा मैं उर्वी तरंग युक्ता, नदियों में धाराएं होती है ना, धाराओं से युक्त होकर हम उसकी प्रेरणा से ही जा रही हैं। तो हम तो कुछ नहीं कर सकती, आप क्या करें, इन दोनों के पास में जाइए। ये जीवन विज्ञान भी बता रहे हैं कि अगर आपका काम जहां से हो सकता है आपको वहीं जाना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, प्रधान है प्रधानों, प्रधान कार्य प्रधान जी, हाँ ही है ना। प्रधान और अप्रधान में यदि कार्य प्राप्त हो तो क्या करना चाहिए, प्रधान में कार्य करना चाहिए। नियम भी है, गौण मुख्य मुख्य कार्य। तो ये है कि मैं तो गौण हूं, मेरे पास निवेदन करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं इतना तो बता सकती हूँ, आपको तरीका बता दूँ ये काम कैसे हो सकता है। तो ये काम ऐसे हो सकता है कि इंद्र के पास जाओ या सविता के पास जाओ। वैदिक जो नदी है वो कितनी सुंदर है, वो बात भी करती है, उनको समझ भी है, वो तरीके भी बताती हैं सफलता के, है ना। क्यों आचार्य जी, नदियां मतलब हमारी नदियों में भी समझ है,
इसलिए तो
पूजा करता है। इंद्रो आसमान अरदत वज्रबाहु, इनकी व्याख्या देखते हैं। इंद्रो आसमान अरदत, इंद्रे ने खन्यते, वज्रबाहु रदती खनति कर्मा, अपाहन वृत्रम तम स हतवान परिधिम नदीनाम इति व्याख्यातम, नदीनाम परिधिम स करोति। देवो अनयत सविता सुपाणी कल्याण पानी, कल्याण एव पाणौ यस्य स कल्याण पानी, पानी इंद्र कौन है, इंद्र आत्मा है, इंद्र परमात्मा है, इंद्र विद्युत है, इंद्र सूर्य है, इंद्र राजा है, इंद्र सेना है, इंद्र भोजन करता है, इंद्र भोजन कराने वाला है, ये सब इंद्र हैं। यहाँ जो है विद्युत, आधिदेविक अर्थ में, आध्यात्मिक अर्थ में आत्मा है, आत्मा ने सारी वृत्तियां उठाई हुई हैं, नहीं उठाई हुई, तो पहले वहीं से संकल्प प्रारंभ करो। और फिर क्योंकि उसने तो एक बार उठा ली, संस्कार बन गया, अब हमें चला कौन रहा है, चला कौन रहा है, सविता। तो अब सविता के पास जाओ सीधा, है ना। और वो सविता कौन है, मन है भाई सविता, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है, वो सविता मन है। तो मन से निवेदन करो, मन से निवेदन क्या करें, मन में संकल्प करो, संकल्प वही सविता, संकल्प सविता भी है। ये खैर ज्यादा गहन व्याख्या हो जाएगी, अब इसी पे देख लेते हैं। प्रगृह पाणी देवान पूजयन्ति, दोनों हाथों को मिला के क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए हो गया। ये तो प्रसंग अनुसार इन्होंने दे दिया, पूजा कर्मा है। तस्य वयम प्रसवे या मैं उर्वी, उर्व्य उर्णोते विरणाते इति उर्णाभ, ये उर्णोते उर्णी आच्छादने, आच्छादन करती हुई चलती हैं या तरंगों को फैलाती हुई चलती हैं, ये उर्णाभ आचार्य का मत है। या तो विरिय वर्ण से बनी हुई है, विरिंग संभक्त से बनी है, विभाग करती हुई भी चलती हैं। प्रत्याख्याय अंततः आ सुश्रु, उसकी बात का खंडन करके अंत में नदियों ने उसकी बात सुन ली। ये मंत्र जो है उससे पहले कई मंत्र और हैं, ये ध्यान देने की बात है। क्रम से मंत्र नहीं दिए, सूक्त के मंत्र और भी हैं, बीच में दो तीन मंत्र इन्होंने छोड़ दिए। तो वहाँ इंद्र की प्रशंसा नदी ने की है, नदी ने खुद इंद्र से पूछा भी है कि ऐसे ऐसा कोई आपत्ति काल में ऋषि आया हुआ है और ऐसे ऐसे वो पार जाना चाहता है तो क्या करूं, तो उसकी स्तुति इंद्र की नदी ने खुद की है पहले मंत्रों में। तो ये बाद वाला मंत्र है, तभी तो उन्होंने सुना, नहीं तो बिना मालिक के वो अनुमति नहीं देती। आते कारो शिणवाम आवचांसी ययाथ आयाथ है, वैसे आ के साथ में यथ का है। दूराद अनसरथिन नीते नंसई पिप्यान एव योषा मर्या एव कन्या शश्वश्च एते ऐते है। आते कार हे कार, कार नाम है, स्तोता स्तोत्री नाम में पड़ा हुआ है, हे स्तोता क्योंकि तू स्तुति करने वाला है, सोमयाग करने वाला भी है। शिणवा में हम आपकी बात को सुनते हैं, आवचांसी आपके दो वचनों को सुनते हैं। ययात है आप दूरात अनुसार रथे न आयात है, आप गाड़ी से और रथ से दोनों से, दक्षिणा भरी हुई थी ना उसमें, दक्षिणा थी गाड़ी में भी थी रथ में, कम पड़ गई तो फिर गाड़ी भी भेज दो साथ में, तो इतनी दक्षिणा थी। दक्षिणा क्या होता है, गायें भी होती हैं दक्षिणा में सोमयाग की, हिरण्य भी होता है, वस्त्र भी होता है, काफी दक्षिणाएं थी, तभी तो रथ भी था साथ में और गाड़ी भी थी, शिष्य भी साथ में होंगे, ऐसे थोड़ी विश्वामित्र अकेला होगा। अनसा नाम है शक्टेन, शक्त ब्राह्मण का वचन है, अनसा नाम है गाड़ी, रथ रथ अलग है उसमें, शक्टा में तो बैल जुड़ते हैं, गाड़ी में बैल जुड़ते हैं, रथ में घोड़े जुड़ते हैं, ये ध्यान देने की बात है। अनसा नाम है शकट, जैसे पहले गांव में राजस्थान में तो खूब थी ना बैलगाड़ी, वो आप भी अभी भी हैं, हाँ तो वो बढ़िया गांव में होती थी, उसमें ऊँट भी जुड़ जाता था और बैल भी जुड़ जाता था, अच्छा तो उसका नाम गाड़ी हो गया। तो दोनों ही थे, गाड़ी में तो सामान खाने पीने का रखा होगा और उसमें बढ़िया रथ में और चीजें रखी होंगी, दक्षिणा सत्य की दक्षिणा क्या है, सत्य है, सत्य ही सत्व है, हाँ वो दक्षिणा भरी हुई थी और वो दक्षिणा डूब सकती है अगर असुर आ जाए तो, काम क्रोध ईर्ष्या मोह ये सब आ जाए तो। नीते ननसई हम आपके लिए झुक जाती है, ननसई नाम है झुकना, के कैसे झुक जाते हैं, पिप्य माने जैसे माता बच्चे को दूध पिलाते हुए झुकती है, उपमा है, वैसे हम आपके लिए झुक जाते हैं। और योसा मर्या एव कन्या जैसे है, आ श्रृणवाम है ते कारो, हे कार ते आ श्रृणवाम है, हम आपके वचनों को हमने सुन लिया है, वचनानी आया ही दूरात अनसाच रथेन, आप रथ से और गाड़ी से बहुत दूर से आए, हमने ये भी जान लिया, उन्होंने ये भी जान लिया कि मैं ये बहुत दूर से आया है, नदियों ने ये भी जान लिया। नी नाम ते पाय यमान एव योषा पुत्रम, पाय पाय यमान इसका क्या होगा, पायतीति पायमान, हाँ हाँ पायमान है, कौन सा प्रत्यय हुआ यहाँ, पिलाती हुई, सानच सानच प्रत्यय होगा, पायमान एव जैसे दूध को पिलाती हुई माता, पुत्रम मर्या एव कन्या परिशस्व जनाय निनम यथा साकरोति एवं वयमपि कुर्मः। तो इन्होंने विश्वामित्र के लिए अपने स्वरूप को खोल दिया अर्थात जल कम कर दिया और विश्वामित्र पार हो गए। तो हम सभी विश्वामित्र हैं, हम भी संसार से पार होना चाहते हैं, किंतु किस किस की हमें शरण में जाना पड़ेगा, इंद्र की और सविता की शरण में जाना पड़ेगा अगर इन वृत्तियों से पार जाना है तो, इसका आध्यात्मिक हो जाएगा। आदि देवी की यह घटना अंतरिक्ष में हो रही है क्योंकि त्रिष्टुप छंद है, तो ये घटना अंतरिक्ष में हो रही है, अंतरिक्ष में एक विश्वामित्र है और वहाँ नदियाँ जो हैं उन्होंने अपने स्वरूप को खोल दिया है और वो उससे पार होना चाहता है, तो वो एक पदार्थ है जो उससे पार होना चाहता है और कुशिक का वो पुत्र है, और कुशिक कौन है, जो बहुत अधिक शब्द करता है और यह अच्छा जानकार है। तो अत्यधिक शब्द करता कौन है अंतरिक्ष में, विद्युत है, तो ये विद्युत का पुत्र है विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है विद्युत से पैदा हुआ, तो वो विश्वामित्र क्रोंशते आह्वान भी करता है, तो ये घटना मेघ की वर्षा कराने की हो सकती है। दूसरा नदियों के पार जाना है, अगर इसमें आदि भौतिक, अब इसका होगा आदि भौतिक अर्थ। आदि भौतिक अर्थ में नदियों में बाढ़ आई हुई है और आप विश्वामित्र हैं, सबके मित्र हैं, तो क्या करेंगे? उसके ऊपर पुल बनाएंगे, बाढ़ में भी पुल बनता है, क्यों नहीं बनता? सैनिक आके बाढ़ में भी पुल लगा देते हैं, फटाफट सैनिकों का पुल बाढ़ में काम आता है, वैसे आता ही नहीं, सामान्य पुल ही काम करते हैं। बने बनाए पुल होते हैं सैनिकों के पास, आपने पता नहीं शायद, युद्ध में भी नदियों के ऊपर उनको प्रयोग करते हैं, बाढ़ में एक दूसरे को निकालने को प्रयोग करते हैं, उनके बने बनाए पुल हैं, उसको जाके बस क्रेन से रखना होता है। तो विश्वामित्र कौन हो जाएगा? यहाँ यंत्र विद्या को जानने वाला। तो कैसे पार होगा वो? लकड़ी का पुल बनाओ, लोहे का बनाओ, जैसे भी बनाओ, तो पुल बना लेना चाहिए। आप जैसा विश्वामित्र होगा तो रस्सी बांधेगा जी। मन की शुद्धि तो सत्य से ही होती है, और सत्य क्या है? वो निरुक्तकार ने खोल ही दिया, व्याकरण से नहीं खोला। क्या है सत्य? श्रेष्ठानाम विद्यमानानाम पदार्थानाम प्रापिता प्रापको वा, जितने भी विद्यमान पदार्थ श्रेष्ठ हैं जो आप चाहते हैं उनको जो प्राप्त कराने वाला है ये, इसलिए तीन धातुओं से उन्होंने बनाया हुआ है। किसने बनाया था? साक्टायन ने, नहीं तो व्याकरण से तो क्या निकला? अस्तिति सत्य, सत्सु साधु सत्यम। जो सत्सु साधु है पदार्थ मात्र को बताए, वो पदार्थ क्या करता है ये घटना तो निरुक्त से ही हमें पता लगी। इसलिए इण गतौ कौन सी धातु थी? उस धातु से निचंत लाके क्या कहा? आय का बनाया। आय का क्या लिया? यकार लिया। उस यकार को अस्तिति सत्य बना के वहां रखा, तो तब ये निर्वचन हुआ। तो क्या था? वर्ण सामान्यात शब्द सामान्य, अर्थ पूरा आया। आय का नाम है प्राप का, और कस्य प्राप का? सत्यानाम विद्यमानानाम श्रेष्ठतमानानाम पदार्थानाम प्राप का, तो वो सत्य है, उसी से होगा ये। अन्यथा विद्या में भी असत्य, व्यवहार में भी असत्य, दिनचर्या में भी असत्य, असत्य मतलब नियमों को तोड़ना, ये भी एक असत्य है, तो फिर उन्नति नहीं होगी, सत्य के प्रापक नहीं होंगे। असत्य तो अपने आप ही आ जाता है, उसको बुलाना सबसे बड़ी बात है, देवताओं का आधान करना पड़ता है, देवताओं को बुलाना पड़ता है, असुरों को बुलाना नहीं पड़ता, वो तो घूम रहे हैं। हाँ, देवताओं को बुलाना पड़ता है, और देवताओं को बड़ी मेहनत करती है बुलाने में, सत्य का आधान करना पड़ता है। देवता क्या है? सत्यम वही देवा, वो सत्य में ही आते हैं, उनको बुलाना पड़ता है। असुर तो देवताओं को नहीं बुलाएंगे तो कौन आएंगे? देख लेना फिर क्या करेंगे। पहले सत्य आएगा तो सारी चीजें आ जाएंगी। सत्य की बड़ी महत्ता है, शतपथ ब्राह्मण में बार बार सत्य के ऊपर बड़ा जोर दिया हुआ है, और निरुक्त से पता लग ही गया। अब आप श्रेष्ठतम पदार्थ कौन है जो ईश्वर ने जो वेद में दिए बताए हुए हैं, वो कौन है? तम ऋषिम, ऋषित्व को इस जीवन में ऋषि बनना, ये श्रेष्ठतम है, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। ऋषि बनने में ही सारी घटना आ गई, समाज का उपकार भी आ गया, पढ़ना भी आ गया, पढ़ाना भी आ गया, अंदर के तत्वों को जानना भी आ गया, समाधि भी आ गई, योग दर्शन भी आ गया, सारे शास्त्र आ गए, अंदर साक्षात्कार भी आ गया, तो परमात्मा बनाने के लिए बैठा हुआ ढूंढ भी रहा कोई मिल जाए। तो आगे चलते हैं। अश्व नामानि उत्तराणि षड्विंशति, 26 घोड़े के नाम है वेद में। तेषाम अष्टा उत्तराणि बहुवत, तेषाम अष्टा, अष्टा नाम है अष्टौ, यानी उत्तराणी नामानी अंते संति बहुवत, तानी बहुवत संति, बहुवचने ने संयुक्तानी संति, अर्थात बहुवचन से संयुक्त होंगे तो सूर्य रश्मियों के भी हो जाएंगे, आदित्य लोक के भी हो जाएंगे, अनेक चीजों के नाम हो जाते हैं। अश्व का अर्थ यहाँ आदित्य भी है, अनेक लोक हैं, तो एक हमारा आदित्य लोक तो ये वेद में केवल इस हमारे इसी लोक की थोड़ी चर्चा है, अनेक लोक हैं हमारे लिए, ये है जो दूसरी पृथ्वी होगी उनके लिए, दूसरा आदित्य लोक है जो तीसरी होगी उनके लिए, चौथा है क्यों जी आचार्य जी ऐसे ही
तार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम।
हाँ ये एक अच्छा आचार्य जी ने बताया कि कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम। हाँ आया है कृतार्थम प्रति नष्टम अपि। हाँ ये जिसने कृत अर्थ प्रयोजनम जिसने अपने प्रयोजन की सिद्धि कर ली तम प्रति नष्टम अपि अनष्ट जीवन मरण सब उसके लिए सामान्य होगा।
ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे मैं देख लीजिए जो चला गया उसके लिए तो खत्म हो गया जो बचे हैं उनके लिए तो है
नहीं जिसने कृतार्थम कर लिया अपना वो कौन है
ऊपर से प्रसंग जो चल रहा है कि मतलब इसके आगे और इसके ऊपर का जो सूत्र है ऊपर में तो आत्मा की वो परिभाषा करता है
जी जी
ना
जी
ऊपर का सूत्र इसका बात का है स्व स्वामी क्षत्रिय हो स्वरूपलब्धि संयोग
जी
तो मूल ये चल रहा है कि भाई जिसने उसको साक्षात आत्मा तदर्थ दृश्य से आत्मा
उसी के लिए दृश्य के आत्मा
है तो अब वो आत्मा का प्रकरण ऊपर से चल रहा है तदर्थ एवं दृश्य से आत्मा जिसने उसको देख लिया
जी जी
जिसने देख लिया उसके जवाब में ये है कि नष्टम अप्यनष्टम तदन्य जो कृतार्थम क्या है
कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम
जिसने प्रयोजन सिद्ध कर लिया
जी
उसके लिए संसार
नष्ट
नष्ट और बाकी के लिए जैसा है वैसा है
ऐसा घट तो जाएगा पर उस प्रकरण से ऐसा नहीं लग रहा
देख लो है तो है नहीं तो नहीं
कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम तद अन्य सामान्यत्व अन्य साधन घटेगा तो ये भी पर उसके लिए भी मुझे लग रहा है कि ये घटेगा कि उसके लिए तो नष्ट
प्रसंग देख लो प्रसंग में जो घटेगा वो घटेगा
ठीक बात है तो वो देख लेंगे आचार्य जी उसमें ये भी लग रहा है कि नष्टम अपि नष्टम कोई मर रहा है जी रहा है कोई ना नष्ट है उसके लिए ना कोई अनष्ट है जिसने तत्व जान कर लिया अच्छा अच्छा चलो देख लेंगे आचार्य जी कल योग दर्शन लेंगे
ऊपर का जो प्रसंग है वो ही
हाँ ये तो घट ही रहा आप वाला तो पर कोई और ज्यादा इसके गहन जाना
मुझे क्या
किंतु कोई चाहे कि
आप जी देखो सांख्य जो सांख्य है ना
जी जी
निरीक्षण वाली सांख्य
अच्छा
तो वहाँ भी यही है वो यही कहता है प्रकृते है सुकुमार कर्म न किंचित अस्तित्व में मतिर भवती या दृष्टास्मिति न पुनर्दर्शन उपैति पुरुषस्य
जी
ये संसार उसके लिए तो खत्म हो जाता है जो इसको देख लेता है जो इसको नहीं देखता उसके लिए बना देता
ठीक है ये तो घटी रहा है इसमें पर इसको थोड़ा ऐसा भी थोड़ा कि भाई नष्टम है नष्टम उसके लिए जिसने
पुस्तक प्रमाण है
पुस्तक देख लेंगे
देख लेना जो उसमें लिखा है वो सच है
जी वो ठीक बात है वो तो उसको लगता भी है ना प्रसंग अनुसार है ना या जीवन व्यवहार से कि भाई जिसने ईश्वर का साक्षात्कार लिया उसके लिए कोई जिए मरे कुछ भी हो सामान्य उसके लिए साधारण हो गया सब कुछ
आप इसको
नहीं ठीक
है कि उसके लिए कुछ नहीं है जो
जान चुका है
और उसके लिए सब कुछ है
जी
जो अभी वहाँ
डटा हुआ है ठीक बात है वो तो घट ही रहा है और इसको आगे देख लें अब इसमें अश्व के नाम हैं तो इसमें अश्नुते अश्व कस्मात अश्नुते अध्वानम जो मार्ग को व्याप्त कर रहा है वो क्या है अश्व है महाअश्नो भवति इति वह घोड़ा खूब खाता है क्या
सारे चलते रहते
हैं अच्छा तो इसलिए महाअश्व हैं तो अर्थ तो यही निकल रहा है इससे महाअश्न महान अश्न भोजनम यस्य तो महाअश्नो भवति महाभोजी हाथी के बारे में सुना था कि खूब खाता है हाथी
है? जैसे घोड़े को छोड़ देना तो
अब यहाँ तो बहुत क्या है अश्नुते अध्वानम आगे जब प्रवचन हाँ। करेगा तो खाया क्या उसने रस था
तो दो घटनाएं हैं वहाँ नहीं आचार्य जी एक निर्वचनीय दो है एक तो अश्नुते अध्वानम एक घटना पूरी होगी दूसरा महाअश्नो इतिवा दो घटनाओं के कारण वो अश्व है इसका देख लेते आगे तत्र दधिक्रा इति एतद् दधत् क्रामति इति वा इसमें दधिक्रा भी पढ़ा हुआ ना अश्व नामानी किसने किसने याद किए सुनाइए। पुस्तक में देख के तो कोई भी सुना देगा जिसने याद नहीं किया। मैं तो वैसे कह रहा हूँ, नीचे क्यों देख रहे हो? हाँ, पहला कौन सा है? हत्या हय अरवा वाजी सप्ती वहनी दधिक्रा, आ गया नहीं आ गया? हाँ, तत्र दधिक्रा इत्येतद् दधत् क्रामतीति वा, बैठते ही दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है व्यक्ति। जैसे ही बैठा ना घोड़ा, बड़ा अच्छा लगता है वो, बस थोड़ा सा लगाम मिलाई तुरंत दौड़ता है, सबसे तीव्र गति से दौड़ता है बैठते ही। और भैंसे वैसे के ऊपर बैठे तो बैठते ही बैठेगा, मतलब घोड़े की क्या क्वालिटी है कि वो बैठते ही दौड़ने के लिए दौड़ता है, कि अब सब वो समझ जाता है कि अब ये दौड़ना चाहता है। और ददत क्रंदती थी, बैठते ही हिनाता है, क्या शब्द वब्द करता है कुछ जो बैठे होंगे घोड़े पे? आप तो बैठे हो ना वहाँ कुरुक्षेत्र में? अच्छा, कुरुक्षेत्र में वहाँ है ना हॉर्स राइडिंग, तो वहाँ ये बात कुरुक्षेत्र में थे ना आचार्य रविंद्र जी के पास। हाँ, तो वहाँ आचार्य रविंद्र जी जब कुरुक्षेत्र में थे ना तब ये पढ़ते थे वहाँ, तो वो सबको घोड़ा चलाना सिखाते थे, वहाँ थे ना सुविधा। और दधत आकारी भवती, बैठते ही चौड़ा हो जाता है घोड़ा, थोड़ा तकड़ा हो जाता है, प्राण भर लेता है ना, हाँ सांस भरता है ना, जैसे मनुष्य भी सांस भरेगा तो थोड़ा शरीर बढ़ जाता है उसका, ऐसे ये भी हो जाता है। तस्य अश्व देवतावच्च निगमा भवन्ति, तस्य एव दधत इति तस्य शब्दस्य अश्ववत, घोड़े के समान अश्व इव और देवता इव, देवता के समान, कहीं तो एक घोड़ा लिया जाएगा वेद में, कहीं देवता लिया जाएगा। देवता लिया जाएगा तो सूर्य नाम हो जाएगा, और घोड़ा लिया होगा तो हम जानते ही। तद यद देवतावत उपृष्टात व्याख्या, समय देवत कांड में आएगा तो ये वहां इसकी व्याख्या करेंगे। अथ एतद अश्वत, यहाँ केवल घोड़े के लिए बता रहे हैं। और इस मंत्र का विनियोग कहाँ करते हैं वो पौराणिक लोग जो हैं, ये जो दधि भक्षण में इसका विनियोग करते हैं। इसको मंत्र को दधि शब्द ही नहीं है, क्योंकि दधि के लिए वेद में मंत्र ही नहीं है, तो दधि का तो विनियोग करना है खाते समय यज्ञ में, तो कहाँ करें? तो दधि क्राम है, दधि एक ही बात है, उसको क्रामत को हटा दो, दधि बच गया। जैसे बुद्ध की उपासना करते हैं नौ ग्रह की पूजा में, क्या करते हैं? उद्बुद्धस्व अग्नि, मैं तो क्योंकि रहा हूं मुझे पता है, तो उद्बुद्धस्व अग्नि, तो यहां क्रिया है, तो हमने पूछा भाई ये तो क्रिया है, जब हमें ज्ञान हो गया तो क्रिया को आपने बुद्ध ग्रह से कैसे ले लिया, वो तो उद्बुद्धस्व का उद्बोधन हो जाओ, तो कहे कि इसमें बुद्ध तो है। हाँ हाँ वही है, है नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्रिया हो या कुछ भी हो, वहां बुद्ध है या नहीं ये बताओ, उद्बुद्ध, तो उद को भी हटा दिया, स्य को भी हटा दिया, बुद्ध को रख लिया हमने, इसलिए हमारे पास मंत्री नहीं नव ग्रह पूजा का।
तो इसका अभिप्राय जो आप हमारे वो थे ना, क्या नाम है, साधु थे
जी,
करपात्री जी से किसी ने कहा कि वेद में हिंदू शब्द नहीं है जी, तो बोले है
जी,
ये जो वेद का एक मंत्र है उसकी पहली पंक्ति में हिंग कृणवाना
जी,
और दूसरा जो पंक्ति है दोहाना
जी,
तो बोले पढ़ के देख लो।
अब वो तो इतने भारी विद्वान थे, उनकी हालत थी क्या?
हिम चरणवाना से तो हिम है
जी,
और दुहाना से दो है, मिला के देख लो क्या बना,
हिंदू बन गया। और फिर निर्वचन
में ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बने,
मदीना शब्द ही हो जाएगा,
तो फिर वो एक हमारे उपदेशक बताया करते हैं कि भाई जो कि ऐसी व्याख्या करे उसको क्या करे, अग्नि मीड़े, तो जो पुरोहित ऐसी उल्टी सीधी व्याख्या करे तो उसको क्या करो। तो ऐसा किसी ने मेरे को आनंद पुरुषार्थी जी ने किसी ने बताया था कि भाई वो एक ऐसा मंत्र की व्याख्या कर रहा था कोई पुरोहित, तो कोई आर्य समाजी खड़ा हुआ, तो उसने क्या किया कि भाई एक मंत्र और सुन लो कि आपने बड़ी श्रेष्ठ व्याख्या की, अब वो मंत्र आपके लिए है कि जो ऐसी व्याख्या करे उसके लिए वेद में क्या विधान करे बताओ, तो मैं सुनना चाहूंगा कि अग्नि मीड़े पुरोहित, तो ऐसे पुरोहित को अग्नि में मीड़ दो। और कौन सी में? यज्ञस्य। इससे क्या मिलेगा? रत्न धातु मिलेगा। हाँ तो उसके लिए फिर यही उपाय है, कबीर कबीर मनीषी को कबीर बोलता है तो ऐसे पुरोहित का क्या हाल होगा, पुरोहित भी वैसे तो है ही नहीं वो। तो ये अनर्थक होते हैं, व्याकरण किससे बचाता है ऐसे अनर्थक, निरुक्त किससे बचाता है ऐसे अनर्थक, सत्व ब्राह्मण किससे बचाता है ऐसे अनर्थक अर्थ कोई ना कर पाए, फिर उन्हीं के शब्द लो और उन्हीं का गलत अर्थ कर दो तो फिर कहेंगे आपने कैसे किया, तो आपने कैसे किया, तो उनको अकल आ जाती है। एक बार गोष्ठी में ऐसे ही आचार्य जी हो गया, एक बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हो रही थी, तो कुछ वैज्ञानिक भी थे हम जैसे पंडित भी थे, दोनों को बुलाया हुआ था कि भाई कुछ समन्वय हो जाए, समन्वय तो होता ही नहीं वहाँ गोष्ठियों में, वैज्ञानिक और जहाँ पंडित आए तो वहाँ समन्वय न हो गए, विसमन्वय जरूर होता है। हाँ तो उसने 5000 साल से पंडित कह रहे हैं वेदों में ये है, वेदों में ये है, ये जिसे होता है, ऐसे एक प्रवचन दे दिए और गलत अर्थ प्रतिपादित जैसे करते हैं वो गौ वाला है कि भाई गो घने अतिथि आदि अर्थ कर दिया, सब लोग शांत हो गए, उत्तर कौन दे। फिर संयोग से मेरा बाद में प्रवचन था, ये भी संयोग हो गया, नहीं बाद में तो बोलने नहीं दे, तो मेरा बाद में तो मैंने अपना क्या बोलूँ, मैं बोल तो कुछ और रहा था पर क्योंकि इनका खंडन करना जरूरी था, मैं तो सोच के कुछ और गया था पर उनका खंडन जरूरी आ गया तो मैंने अपना विषय बदल लिया। तो फिर क्योंकि लिख के तो कुछ और दिया हुआ था वैसे, पर उसमें थोड़ा जोड़ दिया है। फिर मैंने कहा भाई एक सूत्र है H2O, तो इसका अर्थ यहाँ है जो वैज्ञानिक है सब समझते ही हैं, मेरे को इसका एक नया अर्थ समझ में आया है। H का अर्थ यहाँ हीलियम है, हीलियम के 2 परमाणु मिलेंगे, ऑक्सीजन का 1 मिलेगा तो जल बनेगा। मैंने व्याख्या नहीं से प्रारंभ किया, हल्ला मचा दिया उन्होंने वहां वैज्ञानिक, कह रहे आपने गलत व्याख्या कैसे कर दी, मैं आपको कैसे पता इसकी ये व्याख्या है, इसका अर्थ एच से 2 निकल सकते हैं, नहीं हीलियम भी निकल सकता है हाइड्रोजन भी निकल सकता है, तो अर्थ यहाँ हीलियम नहीं है इसका आधार क्या है, यहाँ हीलियम नहीं है ये क्या कारण है, तो सांप सुन गया उनको, तो हीलियम नहीं है ये आप किस आधार पर कह सकते हैं, हाइड्रोजन ही है। फिर आ गया स्लिप कि जिस वैज्ञानिक ने सूत्र दिया है और प्रयोग किया है उसने उसका अर्थ यहां हाइड्रोजन ही किया है, मगर आ गए ना आप असली पे, अब यहां आ जाओ वेद पे, आपने जो अर्थ बताया है ये किस आधार पे बताया, आपने व्याकरण पढ़ा संस्कृत का नहीं पढ़े, आपने निरुक्त पढ़ा नहीं पढ़ा, ब्राह्मण पढ़ा नहीं पढ़ा, तो ऐसे ही आपका अर्थ है जैसे मैं हीलियम का वहां हाइड्रोजन का अर्थ हीलियम कर रहा हूं।
कभी-कभी
चुप हो जाता,
एक बार क्या हुआ, पूरा शांत हो गया, 35 मिनट तक बोलता रहा कि हिंदू धर्म में पुत्र का बड़ा महत्व है
जी।
और जो कुम नाम नरक का त्राण करता है जिसको ये पुत्र नहीं होता है वो अच्छा होता है वैसा
जी। ठीक बात है,
35 मिनट बकवास करना ऐसा शब्द होता है कि उसका विलोम नहीं होता
जी जी,
तब तो मान लेते हुआ था
ठीक बात,
यदि पुत्र शब्द से पुम नाम नरक से त्राण करना है
जी,
तो पुत्री का क्या
जी जी
जी। तो मैंने कहा फिर मैं तो क्या हुआ आपके भाषण
ठीक तो बात हो तो दोनों घटते हैं,
मतलब वर्षों बकवास करते हैं
जी जी।
लेकिन ये नहीं सोचते कि इसका उत्तर वही है,
वही है दोनों घटना हो तो एक घटना है
हाँ?
वो घटना पुत्री में भी घट रही है, पुत्र में घट रही है,
तो पुत्र की विशेषता क्या है
जी जी। तो ऐसी गोष्ठी में कभी कभी ये तर्क देना पड़ता है, बैठे बैठे तर्क आ गया।
एक बार एक बीबी चौबे होता था
जी जी,
मर गया वो होशियार
जी,
वो उल्टी सीधी बातें अंग्रेजी में बोलता था संस्कृत के बारे में, उसका एक विशेष योगदान ये था
जी जी,
वो सदा बात अंग्रेजी में करता था, वो आती संस्कृत का
जी,
आती संस्कृत उसे थी वो तो अलग
जी।
एक दिन भाषण दे रहा था वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, बहुत बड़ा प्राची विद्या सम्मेलन
जी,
तो कहने लगा वेद में साकार भी है, वेद में निराकार भी है, बहुदेवतावाद भी है, एकदेवतावाद भी है। मैंने कहा कि चौबे जी मेरा एक प्रश्न है
जी,
वेद में एक वाक्य का गुण है कि नहीं
जी,
पता, मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, तो तुम्हारे फायदा क्या है बोलने का?
ये बढ़िया होता है, गोष्ठियों में प्रश्नोत्तर बाद में कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं व्यक्ति को जिसने बोला, उसके लिए 10-20 मिनट होते हैं, इससे कुछ भी पूछो।
मुश्किल क्या होती है, ये एक दो समय चला जाए तो सारी गोष्ठी वाले भाग जाते।
ये भी ये है तो
वो कहते हैं जी ये गोष्ठी तो आर्य समाजी,
आर्य समाजी गोष्ठी हो गई है।
यहाँ बुलाया था वो एक आदमी ने पूछा जी दो चार विद्वान का नाम बताओ, तो मैंने दे दिए दो चार विद्वान के आर्य समाजी के नाम। मतलब सवेरे तो गोष्ठी शुरू हुई, शाम को तो पारिश्मा जी आरिश्मा जी बचे।
तो ये कितना बड़ा प्रभाव है आर्य समाज का,
दो व्यक्ति होने चाहिए किसी भी गोष्ठी में, दो
जी जी,
वो गोष्ठी जो है ना फिर या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो उनकी चलेगी।
ये भी ठीक बात है। तो कभी कभी जो हुआ है ना, जो बड़ी काम की होती है, वो ऐसा उनको फंसाया कि उन्होंने हाथ जोड़ लिया अभी वो, कि भाई बिल्कुल ठीक बात है कि आप खंडन का आधार ही समाप्त हो गया आपका, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने वो जल बना के नहीं देखा था, ये भी मान ही रहे थे कि इसका HO2 का ही अर्थ है। तो ऐसे ऐसे हुआ काम आ जाती है, तो फिर पंडितों ने तो खूब ताली बजाई जो दूसरे वर्ग था, और वो उनको सांप सूंघ गया फिर,
है ना, ये तो जान बच गई।
तो ये हुआ कभी कभी काम आ जाती है। तो आगे चलते हैं,
बल्कि हुआ ही काम आती है
जी, जी।
इसमें चरक में जो इसको हुआ को क्या लिखा है
जी,
युक्ति,
युक्ति है ना, युक्ति है।
वहां उसने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी
जी,
वो लिखता है ऊपरी तिष्ठति युक्ति जिह द्रव्य ज्ञान।
ठीक बात है कि वो ऊपर ही रहता है जो युक्ति लगा लेता है,
युक्ति युक्ति है वो काम आती है, दूसरी चीजें काम नहीं आती।
और चरक तो है युक्तियों पे आधारित, किसका पेट सख्त है, किसका मुलायम है, किसका कितनी औषधि देनी, क्या देना, क्या करना है, सब युक्ति पे आधारित। तो अब इसको देखिए, इसका जो है ना पौराणिक समुदाय क्या करता है, इसको दधि खाने में भी नियोग करता है। जैसे उसका बताया उद्बुद्धेश्वर, बड़े बड़े पंडित भी जो विद्वान है, वैयाकरण भी हैं, वो जब नवग्रह पूजा कराएंगे या करेंगे तो यही है उद्बुद्धेश्वर, इसी से बुद्ध की पूजा करते हैं, जबकि वहां क्रियापद है। तो आप समझ सकते हैं बुद्धि का स्तर कहाँ पहुंच गया। उतस्य वाजि क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवायाम बद्धो अपि कक्ष आसनी क्रतुम दधिक्रा अनु संतवि त्वत् पथाम अंकांसी अन्वा पणि फणत। ये घोड़े के सारे विशेषण हैं। उत अपि स वाजी अश्व क्षिपणिम, लगाम को हिलाते तुरण्यति, शीघ्र गति करता है, और ग्रीवायाम बद्ध, ग्रीवा में बंधा हुआ, अपि कक्षासनी, और कक्ष में क्या बंधा होता है उसके, हाँ कक्ष जो आया था ना लगाम से, उसमें एक बीच में भी होती है, जी जी। और प्रथम नाम है कर्म नाम में पढ़ाई हुआ, अपने कर्म को दधिकरा अर्थाई गए दधता क्रांति, ये सारा ऐसा होता हुआ। अनु संतवि त्वत, ये बड़ा विशेष है, क्या करता है, सम एक ही भूय तनोति विस्तारयति, टेढ़े मेढ़े मार्ग को क्या करता है, पार कर लेता है, सिद्ध कर लेता है। अर्थात जैसे भी लगाम खींची तो ये जानता है कि किधर दौड़ना है, किधर भागना है, कहां कूदना है, ये इसका अर्थ है। पथाम मार्गों को, अंकांक्षी नाम है टेढ़े मेढ़े को, और क्या करता है अंत में, आ पणी फणत, पुनर पुनर क्या है, पुनर पुनर भृशम वा कणती गच्छती थी आपणी फणत, बार बार जाता है, यानी कि एक बार ही काम होगा, जब भी चाहोगे उसको तभी वो कार्य करेगा। अपि सहवाजी वेजनवान गतिवान क्षेपण मनु प्रेरणाया पश्चात, प्रेरणा प्रेरणा केन भवती, लगाम से जब खींचते हैं ना तब उसको समझता है कि कुछ कह रहे हैं। तूर्णम अश्नुते अध्वानम, शीघ्र ही मार्ग को पार कर लेता है, ग्रीवायाम बद्ध, किंतु उसकी गर्दन भी बंधी होनी चाहिए, गर्दन भी बंधी होती है क्या, हाँ नहीं तो गड़बड़ भी कर सकता है, किसी को टक्कर वक्कर मार दे। ग्रीवा गिरतेरवा गृह निगरणे है, घृणातेरवा और घृणातेरवा गृह ग्रहणे है, इनसे तीन से ग्रीवा बनती है। तो ग्रीवा से ही तो हम शब्द भी फेंक रहे हैं, तो गिरी शब्द से बन जाएगा, और जब उसको पकड़ते हैं तो गृहनाते से हो जाएगा, गृह ग्रहणे से हो जाएगा, और गृह निगरणे गड़ा ना हो तो कुछ खा लेंगे क्या चीजें, तो इसलिए इसका नाम ग्रीवा है। तीन चीजों से अपी कक्ष आसनी इति व्याख्यातम, ये सीधा अपना व्याख्यात है, कक्ष में बंधा हुआ, बगल से बंधा हुआ। क्रतुम दधिक्रा कर्म व प्रज्ञाम, ये ध्यान देने की बात है, क्रतुम का अर्थ क्या है, अपनी बुद्धि भी उसको है और क्रिया भी उसकी है। क्रिया क्या है, जब लगा मिली तो बुद्धि से समझ के क्रिया करता है, तो अपने कर्म से अपनी बुद्धि से। अनु संतवी त्वत, अनु संतनोति शीघ्रमेव कामम अभिप्राय अर्थेन करोति तनोते पूर्वया प्रकृत्या निगमे, ये तनोति है ना, तनु विस्तार है, तो मार्ग को शीघ्र ही बार बार विस्तार को करता है। पूर्वया प्रकृत्या निगमे, ये पूर्व प्रकृति का निगम है, पूर्व प्रकृति क्या होती है, सामान्य, अर्थात यहाँ ना यंगलुगंत है ना सनंत है ना कुछ नहीं है, सीधा बना हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। भाई प्रकृति कितनी है, सनंत है, जो सनाधंत धातुओं से जो है वो सारे अलग हैं, और जो सामान्य धातु से बन गया वो सम्मुख सर्ग पूर्वक से तनु विस्तार से बन गया, मतलब यहाँ ये ना चाहने कि यंग लुगंत हुआ है, यहाँ ये यंग लुगंत नहीं हुआ, पूर्व प्रकृति नाम है सामान्य धातु प्रत्यय यहाँ हुआ है, सनंत धातु बनने के बाद में नहीं हुआ, ऐसा कह रहे, ऐसा लगता है ना कि यहाँ कुछ हुआ हो पर यहाँ कुछ नहीं हुआ। पथाम अंकांक्षी पथाम कुटिलानी पंथा पथतेरवा पद्यतेरवा पंथतेरवा, तीन धातुओं से पंथा बनता है, पतलिरी गतव, तो पतति गच्छति अस्मिनिति पथा, और पद्यते गम्यते अस्मिनिति पथा, या ये न जिसके द्वारा व्यक्ति आगे पहुंचता है, और पंथतेर पथि विस्तार विस्तारम आपनुवंति ये न। अंको अंचते, अंक क्या है, अंचते, अंचु गतव, तो टेढ़ी मेढ़ी गति को अंचते कहते हैं। आप पणि फणत इति, फणते चरकरिन वृत्तम, चरकरित वृत्तम नाम है यंगलुगंत, तो फण धातु गति अर्थ में है और उसको यंगलुगंत कर दो तो पुनः पुनः फणती गच्छति इति, आप आपणि फणत अर्थात बार बार जाता है। दस, ये पूरा हो गया, दस उत्तराणी आदिष्टोप योजनानी इतिहाचक्षते, ये ध्यान देने की बात है, ये दस आदिष्ट उपयोजनानी है, ये आदिष्ट उपयोजनानी कौन है, किसको याद हो गए हैं, हरि इंद्रस्य रोहित अग्नि हरित आदित्यस्य राशभ राशभ अश्विनौ आगे अरुण्य गावो उश्याम स्यावा सवितु। अब इसको पहले समझ लिया जाए ये क्या है, आदिष्ट नाम उपदिष्ट योजनानी संबंधिनी, जो हमेशा ही जुड़े हुए नित्य संबंध है, ये कभी अलग नहीं होते, ध्यान देने की बात है, ये कभी भी अलग नहीं होते, नित्य संबंध वाले आदिष्ट, आदिष्ट नाम उपदिष्ट है और योजनानी संबंधिनी, ये हमेशा नित्य संबंध है अर्थात समवाय संबंध। समवाय संबंध क्या होता है, गुण और गुणी अलग नहीं हो सकते, अग्नि का गुण क्या है, जलाना और प्रकाश देना, तो उसके बिना अग्नि नहीं है। पट चादर है, ये चादर है, ये चादर में क्या है, तंतु है, और इन तंतुओं को अलग करते तो चादर भी नहीं है, तो नित्य संबंध है अर्थात पट नाम तभी है जब इसमें तंतु है, तंतु अलग तंतु है किंतु जब वो पट के रूप में आ जाते हैं तब वो समवाय संबंध में रहते हैं, ये नित्य संबंध होता है पदार्थ के साथ में, धर्म आत्मा में समवाय संबंध से रहता है, ये ध्यान देने की बात है, धर्म जो है सत्य है ये आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। किंतु ऐसा होते हुए भी जो चीज जैसी है उसको ये नहीं मानता तब थोड़ा अविद्या से लिप्त हो जाता है, अन्यथा समवाय संबंध से धर्म आत्मा में है तभी मुक्ति हो सकती है अन्यथा नहीं होगी। ये जो भी चीजें आती हैं बाकी ये किसी के प्रभाव के कारण आती है, आत्मा में मन में चित्र चल रहा है आत्मा उसको देख लेती है बस वो प्रभावित हो जाती है, वो नित्य नहीं, नित्य तो इसके अंदर धर्म ही रहता है समवाय संबंध से। ये आदिष्टोपयोजना, इनका एक मंत्र भी देखेंगे आप, ऋग्वेद निकाल लेना, एक तो घटाई देंगे। तो ये क्या है? सहचर्य जाना है, सहचर्य का जाना है, सहचरणम सहचर, और सहचरस्य भाव कर्म हुआ, उनका भाव और कर्म कौन समझाएंगे कि क्या होता है? तस्य भाव और तस्य कर्म, ये भाव और कर्म क्या है? अगर ये नहीं समझे तो ये प्रकरण समझना मुश्किल है। ये क्या है कौन बताएंगे? भाव और कर्म, तस्य भाव कर्म हुआ, तभी प्रत्यय क्या होता है यहां? साचर्य कैसे बन गया? शंख प्रत्यय किससे हुआ? गुण गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यो कर्मणि सैच उपृष्टात भावातपि अनुवर्तते, कर्म में भी होता है भाव में। तो भाव कर्म क्या है? आप कहते हो मेरी ये भावना है भाई, हमारे ऋषिधन इनके प्रति भावना है, ये मेरे भाव हैं, ये भाव हैं क्या? इसको आप कैसे समझाएंगे? जब तक ये नहीं समझाएंगे ये दस आदिष्टोप योजना नहीं समझ में नहीं आएंगे। और ये मंत्रों में बहुत ज्यादा है, इन्होंने भले नहीं दिए हो पर मंत्र इनके बहुत ज्यादा है, कई कई मंत्र हैं, एक के जितने भी इंद्र के मंत्र हैं लगभग उनमें चीजें हैं। तो क्या है भाव भाई, कोई तो बताए भाव है क्या?
इसके कारण वो चीज है,
तो मनुष्यता क्या है? वो मनुष्यपन क्या है? शब्दात एव शब्दानाः, अर्थ जातम वो है ना, का कापुन क्रिया इहा, कापुन इहा चेष्टा, कापुन चेष्टा व्यापार, तो शब्द एव शब्दानाः, तो अर्थ तो नहीं खुला इससे। मनुष्य मनुष्यता, हमने मनुष्य पूछा था, आपने मनुष्यता बता दी, मनुष्यता क्या है? भगवान तो केवल हम निर्वचन हम करोती न जाप्यति भाव दर्शाव्य कि ऐसे भाव वर्तत है। भाव है भावना, भवितु भावनानुकूल है, भावितु व्यापार विशेष है, इसके बिना ये समझा नहीं जा सकता। भवितु भावनानुकूल, भावितु व्यापार विशेष भाव भावना। भवितु होने वाले का षष्ठी है, भावनानुकूल है होने के अनुकूल, भावितु जो करने वाला जो करता है उसका जो व्यापार क्रिया विशेष है वो भाव भी और वो भावना भी है। तो यहां इंद्र की ये आदिष्टोप योजना नहीं है, साहचर्य है, अर्थात ये साहचर्य किस रूप में है? ये भावना के रूप में इनका साहचर्य है। तो व्यापार इंद्र का जो व्यापार विशेष है, इंद्र की जो क्रिया विशेष है, इंद्र जिनके द्वारा क्रिया करता है वो क्या है? आदिष्टोप जो हरि इंद्र से, वो क्या कौन है? हरि है, इन द्विवचन है हमेशा, दो शक्तियां इंद्र की है, वो उसकी भावितु व्यापार विशेष है। इंद्र कौन है? भावितु है, करता है, उसका जो व्यापार विशेष है वो क्या है? हरि है। हरि इंद्रस्य रोहितो अग्नि, अग्नि के रोहित हैं वो कौन है? व्यापार विशेष है। हरि इंद्रस्य रोहितो में हरित आदित्यस्य, आदित्य के कौन है? वो हरित है। और अश्विनी के कौन है? राशभ है। अश्विनी किससे काम करता है? राशभ से करता है। अब देखो वही बुद्धि चली ब्रह्मचारी के में, इसलिए अर्थ नहीं किया था, तो गधे से काम करता है, इन्होंने वही बोला है ना। तो अश्विनी की शक्ति गधे हैं, शक्ति जो है गधे हैं, वो क्रिया जो है, तो फिर राशव यहां लोक के मत लो ना आप, वेद के लो। और इनका भी प्रयोग है, और इंद्र जो है ये रामायण में भी इसका प्रयोग हुआ है, वाल्मीकि रामायण में जो यान था रावण का, जो यान था वो राशव की शक्ति से चलता था, ये वाल्मीकि रामायण में। व्याख्याकारों ने जिनको ये वेद समझ में नहीं आते उनका अर्थ गधे किया हुआ है, कि रावण का जो यान था, जो रथ था, रथ शब्द है वहां, कि वो गधों से चलता था। हाँ, तो राशव जो है ना अश्विनी की शक्ति है। तो ये सारा है, एक मंत्र देख लेते हैं।
प्रकरण में आएगी आपको।
अच्छा,
क्योंकि वहाँ जितने आप वाहन लेते हो ना
जी,
सवारी लेते हैं
जी,
लेकिन वाहन का वहाँ सवारी है तो
जी,
क्यों कि आप मान लो गणेश जी का वाहन मूष है
जी,
शिव जी का वाहन वृषभ है
जी,
यम का वाहन महसा है
जी,
ये और लेकिन कार्तिकेय का वाहन जो है
गरुड़ है, मोर है गरुड़
है, विष्णु का वाहन गरुड़ है
जी।
अब पर्यायवाची शब्द इसका अर्थ देगा
जी,
वहाँ कहता है गरुड़ ध्वज
जी,
कपिल ध्वज
जी,
मयूर ध्वज
जी,
तो वाहन का दूसरा
ध्वज
भी ध्वज हो गया
जी।
और आप देखेंगे कि अर्जुन के रथ पर
कपि
है ध्वजा में
जी,
तो वो कभी ध्वजा हो गया कभी वाहना हो गया, वो कभी वाहन और कभी ध्वज में अंतर नहीं है
जी,
तो वही मूषक वाहना
जी जी,
या वृष वाहना
जी जी,
या ये वाहन का अर्थ है चिन्ह
वाला। ठीक बात है, और व्याकरण से भी निकल जाएगा वाहन नाम वाहयति वाहयति प्राप्यति तत्वमिति वाहन
है, पहचान है,
पहचान को जो बताने वाला व्याकरण से भी निकल जाएगा। तो अब इसका एक मंत्र देखेंगे, एक 161 छ निकालिए, एक 161 छ हैं, हैं 161 छ, जिस मंत्र में हरि इंद्र पढ़े हों उसी को तो लेंगे। अब आप 121 बोल रहे हो, मैं 161 कह रहा हूँ, किसकी बात ठीक है? अच्छा पृष्ठ, तो पृष्ठ बोला करो ना, अब ये देखिए इसका पहले देवता देखिए ऋषि देखिए, दीर्घतमा और ओचथ्य ये इसका ऋषि है, ऋभवा इसके देवता हैं, जगती छंद है और चौदवे का त्रिष्टुप है, चौदवा तो नहीं है ना। तो घटना कहाँ हो रही है? घटना हो रही है द्युलोक में, ये द्युलोक के विज्ञान की बात करते हैं। ऋभवा कौन है ये जानना जरूरी है क्योंकि ये इसका विषय है। ऋभवा नाम इंद्र स्थान विशेषम ऋभु ऋभु ऋभवा रि भावा रि गतौ जानगमन प्राप्ति तत्र भाति दीपयति प्राप्यति ति ऋभवा ते कुत्र संति। ऋभवा नाम इंद्रस्य प्रियम धाम, इंद्र का जो प्रिय धाम है, जहाँ इंद्र केंद्र में रहता है, सूर्यमंडल में जो रहता है, सूर्यमंडल का अंदर जो केंद्र है उसका नाम वेद की भाषा में इंद्र भी है। तो उसका प्रिय धाम जो है वो ऋभवा है, उस जगह का नाम जहाँ इंद्र रहता क्या है? ऋभवा है। हाँ, सूर्य का एक केंद्र होती है, सूर्य की एक परिधि होती है, सूर्य का एक मध्य स्थान होता है जो केंद्र है, जहाँ ये सारा विस्फोट हो रहा है, जो चीजें यहाँ आ रही हैं वहाँ इंद्र का कार्य है। तो इंद्र वहाँ रहता है, वो प्रिय धाम है, उसका नाम ऋभु है, ये तांड्य ब्राह्मण में आया है। ऋभवो व इंद्रस्य प्रियम धाम है, लिख लीजिए इसको, नहीं समझ में नहीं आएगा मंत्र। ऋभवो व इंद्रस्य प्रियम धाम है, ये तांड्य ब्राह्मण का है। अब ये बात खुल जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। विद्युत तो इंद्र का स्थूल रूप है जो दिखाई देता है, जैसे आपे का स्थूल रूप वर्षा भी है, आपे का स्थूल रूप जल भी है, आपे तो सूर्य में रहता है, और उस आपे को जो नियंत्रण करके ज्वालन कर्म कर रहा है उसका नाम वहां इंद्र है। क्योंकि घटना अपने आप नहीं होती, घटना का कोई कर्ता होता है। सूर्य के अंदर जो आपे तत्व भरा हुआ है उसको जो जला के यहाँ प्रकाश भेज रहा है उसको जो, वो वहां का राजा है एक प्रकार से, इसलिए इंद्र राजा भी है। राजते प्रकाशते असौ राजा, जो प्रकाश को करा रहा है, अग्नि को वहां जला रहा है। इसको देखते हैं, इंद्रो हरि युयुजे अश्विनौ रथम, ध्यान देने की बात है इंद्र क्या क्या करता है। इंद्र हरि 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 हरय, तो यहां द्विवचन है, दो शक्तियां इंद्र की, वो क्या कर रही हैं? इंद्रो हरि युयुजे, इंद्र काम नहीं करता, अपने घोड़ों को लगा देता है काम पे। इंद्र जो हरि कस्मात ह्रियते और हरति इति हरि तौ हरि, तो ये जो हरण जिसका किया जाता है या जो हरण करते वाली शक्ति है उसका नाम हरि है, वो घोड़े माने गए हैं इसमें। इंद्र हरि युयुजे, इंद्र किम करोति हरि युयुजे, तो इंद्र अपने घोड़ों को जोड़ता है, काम करना है उसको तो अपने घोड़ों को जोड़ेगा। जैसे आपको कहीं जाना है तो क्या करेंगे, अगर घोड़ा बग्गी है तो पहले घोड़े को जोड़ेंगे, ऐसे इंद्र भी जोड़ता है। और अश्विनव रथम युयुजे, अश्विनी देवता अपने रथ को जोड़ते हैं, हरि अपने घोड़ों को जोड़ता है और अश्विनी देवता अपने रथ को जोड़ते हैं। और बृहस्पति क्या करता है जब ये सारी घटना हो रही है, विश्व रूपाम उपाजत है, और बृहस्पति क्या कहता है, विश्व रूपा कहता है संपूर्ण वाणियों को, सारे रूपों को वाणियों को, यार्थ वाचम है बृहस्पति वाचम उपाजत है स्वीकृतवान, और उस कहीं से वाणी आई और बृहस्पति ने उसको जोड़ लिया, पकड़ लिया, स्वीकार कर लिया। ये रिभु क्या करते हैं, रिभु देवता भी है और मंत्र में भी है। रिभु विभुव और रिभु और विभु क्या है और वाज है, ये तीन देवता और हैं। कितने देवता हुए, इंद्र हुआ, अश्विनी हुए, उनकी साथ में शक्तियां हरि, ये याद रखेंगे तो समझ में आएगा। भवितु भवनानुकूल भावितु व्यापार, भावियत्व का जो व्यापार है उसके जो साधन है उसकी जो क्रिया है वो हरि है, अश्विनी के जो साधन है उसकी जो क्रिया है वो रथ है, और बृहस्पति के जो साधन है उसकी जो क्रिया है वो क्या है, विश्वरूप है। रिभु विभु वाज ये तीन देवता, इन्होंने क्या किया, देवान अगच्छत, इन्होंने देवताओं को प्राप्त कर लिया, देवताओं के पास गए। संबोधन में कौन है, स्वपस, ये संबोधन है, क्योंकि संबोधन कैसे है ये कौन बताएंगे, कितनी बार मैं बता चुका हूं, स्वर के माध्यम से किसको पहचान हो गई है, सर्वनिघात नहीं है, आदि उदात्त है, इसलिए तो मैंने पूछा कि यहाँ क्या लगेगा, स्वर निघात कब होता है, अपदादव, ये किस में है, पद के आदि में, तो स्वर निघात नहीं होगा तो किससे लगा, साष्टिक, ये पहचान आप लोगों को अभी तक तो हो जानी चाहिए, कितनी बार स्वर लगवा दिए, कल भी लगवाए थे एक मंत्र में, तो सीधा देखते ही पता नहीं लगता आपकी, भाई देखा ओहो ये तो भाई आदि उदात्त है तो, और संबोधन वैसे कोई है नहीं, यदि प्रत्यय होता तो अंतोदात होना चाहिए था, आदि उदात्त तो संबोधन में होना चाहिए, संबोधन में होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्वर निघात आदि उदात करने वाले निघात करने वाले संबोधन में दो ही सूत्र हैं, कौन कौन से, आमंत्रित अष्टमिक और साष्टिक, साष्टिक से आदि उदात होता तो अष्टमिक क्यों नहीं लगाया, उसकी शर्त जाननी चाहिए, सर्वम अपादादो अपादादो इति वर्तते, तो ये तो पद के आदि में है तो इसलिए नहीं हुआ, तो सीधा जानना चाहिए। तो ये क्या कौन है, स्वपस, स्वपस का अर्थ है हे शोभनौ, ये भी द्विवचन में है, स्वपस शोभन, सुष्टु अपस रूपांशी यस्य, जिसके अच्छे रूप हैं वो स्वपस है, अपस मतलब रूप, जिसके सुंदर रूप हैं तो वो कौन है, अश्विनौ है। हे अश्विनौ यज्ञम भागम एतन, हे अश्विनौ यूयम यज्ञम यजारम यज्ञोग्यम भागम भजनीयम सेवनीयम ऐतन प्राप्नुत, मध्यम पुरुष बहुवच द्विवचन। तो आप क्या करो कि ये सुंदर यज्ञ जो पदार्थ है ना इनको आके प्राप्त करो। तो इंद्र किसको जोड़ता है, हरि को, अश्विनी किसको जोड़ते हैं, रथ को, बृहस्पति किसको जोड़ता है, वाणी को, और ये किसको इकट्ठा करते हैं, देवताओं को। जैसे समझो कि युद्ध हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें क्या है, आपको शायद पता नहीं है, देवताओं के भी मंत्रालय हैं, देवताओं का भी प्रधानमंत्री है, देवताओं के भी सेवक हैं, देवताओं की भी पत्नियां हैं, और देवताओं के भी, जैसे यहाँ एक मंत्रिमंडल है ना, पूरा मंत्रिमंडल है, कभी उस पर चर्चा करेंगे कौन सा मंत्रिमंडल क्या काम कर रहा है, ये देवताओं का है, तभी तो सारे मंत्री बता रहा है। इंद्र क्या करेगा भाई, घोड़े को अपनी शक्ति को भेजेगा, घोड़े को जोड़ेगा, अश्विनी क्या करेगा, रथ को जोड़ेंगे। तो युद्ध में क्या क्या काम होते हैं, कहीं घोड़े होते हैं, कहीं रथ जुड़ते हैं, कहीं कोई वाणी को देता है। सेनापति क्या काम करता है, आग लगा देता है कि मरने मारने के लिए सैनिक, तो बृहस्पति काम करेगा, वाणी देगा उनको। और ये किसको इकट्ठा करेंगे, ये सामान्य जो है ना दूत होंगे, ऋभु विभु और वाजे, ये किसको इकट्ठा करेंगे, देवताओं के की बात, आ जाओ युद्ध हो रहा है जल्दी से तैयार हो जाओ। और वहां युद्ध की बात है, यज्ञ भी एक युद्ध है, वैसे यज्ञ भी एक युद्ध है, देवताओं को असुरों को मारने के लिए एक युद्ध है, क्योंकि यज्ञ आयुध बोलते हैं इनको सोमयाग की भाषा में। ये जो पात्र है ना यज्ञ के पात्र, ये यज्ञ आयुध है, जब ये मरता है यजमान तो इसके साथ ही जला दिए जाते, तो यज्ञ आयुध बोला है। ये भी हथियार है, ये हथियार किसको नाश करते हैं, असुरों को। और यहाँ भी किसको नाश करते हैं युद्ध में, अगर देवता बलवान हुए तो, नहीं तो देवता खुद भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इसमें कुछ घटनाएं बताई, तो एक मंत्र में दिखाया कि ये इनकी शक्तियां हैं और ये शक्तियां कैसे काम करती हैं, ये नित्य शक्तियां। भावना भाव समझ गए, भावना और भाव क्या है, फिर एक बार सुन लीजिए, भावना भवितु, भावनानुकूल भवितु होने वाले का, भावनानुकूल है होने के अनुकूल, भावितु व्यापार विशेष है। अभी अपने ऊपर घटा लीजिए, महर्षि दयानंद के प्रति आपकी भावना है, हम सब की है, इसका अर्थ क्या है, ईश्वर के प्रति आपकी भावना है, इसका क्या अर्थ है, धर्म के प्रति आपकी भावना है, इसका क्या अर्थ है, अब घटा के बताइए, क्योंकि इसको समझ लेंगे तो आप मिथ्या भावना नहीं करेंगे, फिर उस भावना के अनुसार जियेंगे, फिर आप ये नहीं कहेंगे महर्षि दयानंद के प्रति भावना, उसको जियेंगे। तो महर्षि दयानंद के प्रति भावना, तो इसका अर्थ कैसे घटेगा वो देखिए, भवितु महर्षि दयानंद क्या चाहते थे, पढ़े संगठित रहे, सारे काम वेद के विद्वान तैयार हो। महर्षि ने क्या लिखा, न अवेदवित मनुते तम ब्रियंतम, जो वेद को नहीं पढ़ा वो परमात्मा को जान ही नहीं सकता। उन्होंने कहा सर्वे मनुष्य वेदार्थ विज्ञान आय प्रयत्नो अनुष्ठेय, तो आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो भवितु होने वाले का, तो क्या होने वाला है महर्षि दयानंद के ओर से आपके लिए, और भवितु भावनानुकूल है होने के अनुकूल। अब ये तो महर्षि ने कहा उसके अनुकूल क्रिया ही ना करें, अपना पढ़े ही ना वेद, वेद भी पढ़े तो फिर जीवन में ना उतारे, है ना, और फिर थोड़ा बहुत काम करके समाप्त हो जाए, तो भावनानुकूल नहीं बता, भावितु व्यापार विशेषा। महर्षि दयानंद के प्रति तब आपकी श्रद्धांजलि है, तब भावना, तो भावितु व्यापार विशेष है, जो व्यापार विशेष महर्षि दयानंद का था जो आपके लिए कह के गए हैं उसको करें, और आपका भी जो व्यापार विशेष है वैसा दिखना भावना है, अन्यथा क्या है, शब्द मात्र है, सूचना मात्र है, जैसे रेलवे स्टेशन पे कि ये गाड़ी यहाँ आ रही है, यहाँ आ जाएगी, सूचना मात्र, दूसरों को आप बताते भी हैं अगर आप जीवन में नहीं उतारते। अगर ये भावना बन जाए सबकी महर्षि दयानंद के प्रति, ना तो कोई संगठन में समस्या बचे, ना कोई और समस्या बचे, हजारों वेद के विद्वानों के लड़ेंगे थोड़ी, फिर बैठ के चर्चाएं करेंगे। अपह अपसना में रूप वाला, और सुष्टु अपांसी रूपाणी ययो, जिनके सुंदर रूप हैं, अश्विनी बहुत सुंदर है। अब किस पद पर आते हो, तो जब साक्षात्कार करोगे तब भान होगा क्या, जब अश्विनी क्या है, अश्विनी देवता, अश्विनी देवते हैं, और ये देवते क्या हैं, ये युवा देवते हैं, मतलब हमेशा युवा रहते हैं, युवा रहते हैं और वैद्य भी हैं, देवताओं के वैद्य भी हैं। वैद्य होगा तो अपना कायाकल्प वैसे ही करता रहता है तो ठीक ही रहेगा, ठीक रहेगा, और देवताओं की भी चिकित्सा करता है। और क्यों, ये जिस पदार्थ से बने हैं उसका नाम है आपा, इनमें आपा है। महिलाओं का शरीर जो है पुरुषों की अपेक्षा तरल क्यों रहता है, सुंदरता क्यों रहती है, उसमें भी एक विज्ञान है, क्योंकि स्त्रियां जो हैं वो आपे तत्व उनमें अधिक बढ़ा हुआ है, पुरुष में आग्नेय तत्व अधिक बढ़ा हुआ है, इसलिए इनमें सरलता थोड़ी कम होती है, पके होते हैं,
पानी पीने से सुंदरता,
हाँ, इसलिए जब बुढ़ापा आता है तो आपे तत्व यानी रसायन का प्रयोग कराया जाता है ताकि सुंदर बनाया जाए।
हंसने की क्या बात है, आदमी सूख जाता है तो ऐसा लगता है लकड़ी सूखी है और लकड़ी भी है, इसमें क्या पानी का बाहर खिल रहा है, क्या बात है
नहीं, इसलिए इनके जो बाल है ना, पुरुष जल्दी गंजे हो जाते, इसमें विज्ञान है, ये बिना शतपथ ब्राह्मण के बातें नहीं खुलती हैं। वहां बताया हुआ है कि भाई आप तत्व पुरुष में कम है, स्त्री में ज्यादा है, इसलिए कमनिया भवती, निरुक्तकार आगे ही कहेंगे, एक छोटी बच्ची को बैठा दो और एक छोटे बच्चे को बैठा दो, आपे तत्व वहां ज्यादा है, आपे तत्व के कारण सुंदरता है, सोम ज्यादा है, सरलता भी है, इसलिए इनके जीवन में सरलता भी ज्यादा होती है, छल कपट कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। मैं तो टेलीविजन ही वर्षों हो गए, मैं तो देखता ही नहीं। अच्छा अच्छा, सीरियल में सरलता नहीं है? नहीं, वो तो नाटक है ना, स्वाभाविक नहीं है, इनके अंदर जो स्वाभाविक गुण है ना
वही तो होता है जो होता है,
आदमी की कुटिलता दिखाई नहीं देती।
ये तो माता जी ज्यादा बताएंगे। आपे तत्व है ना, जल्दी बोलता भी जल्दी है, इसलिए आपे तत्व के कारण ही व्यक्ति बोलता है, जब आपे तत्व कम हो जाता है तो गला सूख जाता है।
निषद वाला प्रकरण
जी
पांचवें उसमें है, कब आप जो है पुरुष वचसी हो जाते हैं।
जी जी जी, और ये भी है, इसलिए महिलाएं बोलती भी ज्यादा हैं क्योंकि वो आपे तत्व के कारण, ये भी है, नहीं ये एक विज्ञान है, जब गला सूख जाता है तो आपे तत्व कम हो जाता है, इसलिए पानी पीना पड़ता है तो फिर गला तर हो जाता है, इसलिए स्वाभाविक है कि महिलाएं जहाँ इकट्ठी बैठ जाएंगी तो फिर खूब चर्चाएं करती हैं। और इसलिए ऋषि का भी ज्यादा नहीं हुई है, इसमें भी रहस्य है, क्योंकि ऋषि का के लिए तपस्या चाहिए, तो आपे तत्व चंचल है, वो तपस्या नहीं कर पाता, वो उसका केंद्र नहीं है, सबसे बड़ी बात है, अग्नि का एक केंद्र है, वेद विज्ञान में आपे तत्व का केंद्र नहीं है, केंद्र न होने से अस्थिरता है, तो ये इसका पूरा विज्ञान है, शतपथ ब्राह्मण में पूरा ही खोला हुआ है।
मनुष्य के
सोचने
में आपे तत्व नहीं है,
क्या नहीं
है?
है पर जितना उनकी में है इतना नहीं है। नहीं, ये 99% पुरुषों के बाल उड़ रहे, महिलाओं के क्यों नहीं उड़ रहे? वही खाती हैं, वही जीती हैं, उसमें कारण क्या कि वो उनका जो जिससे उनका मूल तत्व बना है वो है आपे तत्व, तो वो इतनी जल्दी बालों को नहीं उड़ने देता, वही है, दो ही तत्व है, इसलिए पूरा विज्ञान है ये। किसी से मैं विदेश से, हाँ किसी ने मेरे से पूछा था ये विज्ञान, फिर मैंने शतपथ में देख के खुला कि वे ऐसा क्यों है, तो फिर ये शतपथ में एक पूरा प्रकरण आया, तो उसमें महिलाओं के बारे में आपे तत्व की महत्ता बताई, फिर मैंने संबंध मात्र जोड़ लिया, मतलब यहाँ पूरा ऐसे खुल के नहीं बताया कि बाढ़ कैसे उड़ते हैं यार ये, पर क्योंकि आपे तत्व, क्योंकि चरक में पढ़ लिया कि पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ने के बाद यदि पित्त ने बालों की जड़ों को पूरा जला दिया तो गिरेंगे, आधा जला दिया तो सफेद होंगे, चरक में लिखा, तो दिमाग ने संबंध वहां जोड़ लिया। तो ये कुछ हमने जाना, ज्वलती कर्माण है उत्तरे धातु है एकादश, एकादश जो धातु हैं वो ज्वलती कर्माण है, अर्थात वो ज्वलन अर्थ को कहेंगे और ज्वल दीप्त दीप्ति को कहेंगे। तावंत्य उत्तराणी ज्वलतो नामधेयानी नामधेयानी, दो बार इसलिए कह दिया कि अध्याय पूरा हो गया, तो ये ही ज्वलत नामधेयानी, ये अर्थात सुबंत के भी नाम है 12, अर्थात ये क्या करेंगे, जहां ज्वलन अर्थ को जिसके अंदर रहने वाला है ये उसको कहेंगे, और ये घटना को कहेंगे क्रियाएं, तो ये दो अध्याय पूरे हुए, इतना ही रखते हैं, अब आप आगे आप परीक्षाएं देंगे, तो ये बताइए कितना समय चाहिए, हाँ सब मिल के बता दीजिए, क्योंकि मैं जयपुर जाऊंगा तभी आऊंगा जब आप लोग आगे परीक्षा देंगे, मैं अपनी पढ़ाई करूंगा अब जाके, हाँ आज क्या तारीख है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 को दे दीजिए, 6 दिन हो जाएंगे। गया कहाँ, अभी तो पाठ में गया है, अभी तो पूरा दिन बचा है, 25 को क्या दिन है, नहीं नहीं पाठ चलाएंगे, ऐसे ना करें, ये ध्यान रखें काल एक द्रव्य है, और द्रव्य का यदि 5 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं, 6 दिन में करेंगे तो 24 घंटे आपने बर्बाद किए, ध्यान रखना चाहिए, तो ईश्वर दंड देगा, काल का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक द्रव्य है, है? फिर रविवार को क्या करेंगे,
तो 2 घंटा बाकी है, नीले का काम करना पड़ेगा।
अब तो मेला भी आ रहा है,
मेले की कुछ तैयारी कराई कि नहीं?
आचार्य जी समय ही नहीं बच पा रहा।
अब
बोलने का तो बोलने तो बोलने को नाटक की था, थोड़ा फिर मेरे को बैठना पड़ेगा।
कुछ भी अच्छा
प्रवचन तो दे देंगे लोग, सभी सामर्थ्य जो इस विषय में आप कहेंगे, विषय आप बता दीजिए। ठीक है तो ठीक है। तो जी कौन कौन है व्याख्याता? चंद्रगुप्त जी हो गए, व्याख्यान नहीं आता, दार्शनिक है आप। और आप तो बोलेंगे आप तो महावक्ता हैं। और आचार्य जी तो बोलेंगे, वो तो कहने आचार्य जी स्वामी जी तो हैं ही। और श्रीधर जी आप भी तो अच्छा बोलते हैं। ठीक है, श्रीधर जी हो गए, विक्रम जी हो गए, जिनको और इच्छा हो मेरे को फिर वो लिखवा भी लें,
छांट लेना इनमें से जो बेहतर हो।
कितने चाहिए
देख लेना, आप सम्मेलन करते हो
जी,
विद्यार्थियों का समय होता है उसमें।
और
एक एक तरीका तो ये रहता है कि रोज एक दो करा लेते हैं
जी,
एक तरीका ये इनकी इच्छा पर होता है
जी, जी।
कि एक समय में ही सारे करा लेते हैं।
हाँ तो चार पांच जितना
तो तैयार कर लो
जिनका हो जाएगा, तो चार व्यक्ति तो तैयारी कर लें,
चार तो तैयार कर लो जिनका जितना करा सके करा देंगे।
करा
समय कितना रहेगा बोलने का?
पूरा दिन बोल।
वक्ता के लिए सीधी बात है 10-15 मिनट। दस पंद्रह मिनट, हाँ तो 10-15 मिनट ही होता है।
तो व्याख्यान तो विद्यार्थियों का 7 मिनट से 10 मिनट
बस इतना ही होता है,
और उसमें लगभग 5-7 पेज बोल जाता है
आदमी। विद्यार्थी तो बोल ही लेता है वैसे, क्योंकि उसको समझाना कम होता है, बोलना ज्यादा होता है। क्योंकि वो खुद समझानी होता है तो समझाए क्या। आचार्य जी कृपया करें, आज तो समय है, कुछ बढ़िया उपदेश हो जाए।
क्या बोलना?
आप ही बोलते हैं।
मैं भूल जाता हूँ कि मुझे बोलना है, इसलिए नहीं तो बोलना है तो कुछ बोल ही लेता।
आपको तो ना तो पृष्ठ देखना पड़ता है ना कुछ लिखना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वैदिक प्रवक्ता है।
वैदिक प्रवक्ता। ओ, आज के पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो, क्योंकि जो वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ करके हमारे मन में जो अर्थ आता है वो अर्थ जो हम पहले से जानते हैं वही आता है। जैसे हमने अग्नि शब्द बोला तो अग्नि से जो अर्थ हम जानते हैं वही आता है, और इसलिए हमको क्या लगता है कि ये गड़बड़ है, इसमें कुछ गलती है, ऐसा लगता है। और जब हम निरुक्त से देखते हैं उस चीज को तो वही चीज आसान हो जाती है, क्योंकि संगति लगती है। तो संगति लगने के लिए तीन चीजें जो बताई थी उनमें से एक काम निरुक्त करता है। सामान्य अर्थ तो हमने व्याकरण से कर लिया, लेकिन वो घटे ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि अर्थ पहले है और उसका निर्वचन बाद में है। तो जब बाद में निर्वचन है तो निर्वचन ऐसा करना पड़ेगा जो उस अर्थ को घटा सकता है, बता सकता है। इसलिए हमारी जो तीन तरह के शब्द थे, प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति, हमने व्याकरण से तो प्रत्यक्ष वृत्तियों को ले लिया था और वो उसके अधूरेपन को पूरा किया था उणादि से, वो था परोक्ष वृत्ति, और निरुक्त से पूरा करते हैं अति परोक्ष वृत्ति में। मतलब वहां व्याकरण में तो दोनों हैं, शब्द और क्या नाम धातु और प्रत्यय दोनों हैं, उणादि में दोनों में से एक गायब रहता है, तो उनमें से अर्थ के अनुकूल उसको लाना होता है। और निरुक्तकार ये कहता है कि दोनों नहीं हो तो दोनों ही बना लो, लेकिन अर्थ नित्य परीक्षेत केनचित वृत्ति सामान्य, कहीं से कहीं मतलब उसका संबंध बनना चाहिए, उस शब्द का उस अर्थ से कुछ होना चाहिए, जुगाड़ होना चाहिए। मतलब अर्थ में एक अर्थ तो हम लोक में लेते हैं कि शब्द से शब्द को समझ लेते हैं, बुक माने किताब, अब इससे तो अर्थ नहीं बनता, अर्थ है भी और अर्थ नहीं भी है। लेकिन अर्थ तब बनता है जब पदार्थ वाला अर्थ आता है, जो वस्तु वाला अर्थ जो हमारे शब्द से जुड़ता है। ये विशेषता वैदिक शब्दों की है। मतलब बाकी जो लौकिक शब्द हैं वो लौकिक शब्द निश्चित जो बात है उसको बताते हैं, बाकी भाषाओं से अपनी संस्कृत भाषा में जो अंतर है वो मुख्य अंतर यही है कि आपने इसको काऊ कह दिया। किसको? गाय। तो गाय को काऊ क्यों कहते हैं ये नहीं बता सकते। जबकि वेद का यदि आप पढ़ते हैं और एक तरह से यूं मान लो आप कि ये सब मिलाकर के वेद है, मतलब व्याकरण है, निरुक्त है, और अब तक तो दो चीज जोड़ता था, अब इनके साथ बैठ के एक ब्राह्मण भी जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि वो तो मेरा पढ़ा हुआ है नहीं। तो उन्होंने बताया कि भाई नहीं, जैसा व्याकरण है, जैसा निरुक्त है, वैसा ही ब्राह्मण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेद को समझने के लिए तीन शैलियां हैं। आप शास्त्र क्यों समझते हो? तीन प्रकार हैं कि आप ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। मतलब जब आप ब्राह्मण की बात करते हो तो वो ये कहता है कि देखो भाई यहाँ ये अर्थ तो है लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है ये निरुक्त बताता है कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो ये जो चीज है, हम जब तीनों चीजों को मिलाकर देखेंगे और फिर वेद पढ़ेंगे तो तब वेद पढ़ा जाएगा। आप तो शायद पढ़ लोगे, मेरा तो होना नहीं वो तो पढ़ा लिया जो पढ़ना था। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसके पढ़ने से वेद के पढ़ने में रुचि का होना, क्योंकि इसके लिए मनु की एक सुंदर सी पंक्ति याद करो, यथा यथा ही शास्त्रम समधि गच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते। मतलब मुझे व्याकरण अच्छा लगता है कि नहीं लगता, मुझे निरुक्त अच्छा लगता है कि नहीं लगता, मुझे वेद अच्छा लगता है कि नहीं लगता, ये अच्छा लगना किस बात पर निर्भर करता है? आने पर, समझ में आने पर। जो चीज जितनी आपको समझ में आती जाएगी, विज्ञानम चास्य रोचते, उतनी उतनी आपको उसको पढ़ने की जानने की इच्छा होगी, उतना ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए इस सारे प्रकरण में आप एक निश्चित अर्थ को छोड़ करके आप एक विस्तृत परिवेश में से अर्थ का चुनाव करते हैं। और जगह तो हम क्या करते हैं, और जगह तो हम वस्तु से निश्चित अर्थ को ग्रहण करते हैं, अनिश्चित में जाते ही अनर्थ हो जाता है। लेकिन यहां उल्टा है, यहां आपके निश्चित अर्थ को यह नहीं लेता, वहां संगत अर्थ को लेता है। तो संगत अर्थ आप लौकिक कर रहे हैं, आध्यात्मिक कर रहे हैं, आधिदैविक कर रहे हैं, ये जो बात कही गई ना कि इसके अर्थ तीन होते हैं, ये तब तक समझ में नहीं आती जब तक इस परिस्थिति में आप विचार नहीं करते। तो ये जो आज का जो पाठ विशेष रूप से मुझे समझ में जो आया, वो अश्व शब्द तो हमारे मस्तिष्क में बहुत घूम रहा है। तो अश्व को अब देखो कहाँ कहाँ घटित होता है, सूर्य के साथ अश्व होते हैं, ये साहित्य में भी है, ये लोक में भी है। अब अश्व है और हम घोड़े जब दिखाते हैं तो अश्व ही दिखाते हैं। कालिदास का एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है और अच्छा भी है, वो कहता है सिद्ध्यन्ति कर्म सुमहत स्वपियन्नियोज्या। दुष्यंत की प्रशंसा कर रहे हैं देवता लोग, भी आपने असुरों से संघर्ष करके देवताओं को विजय दिलाई और देवताओं को विजय दिलाने के लिए आप पृथ्वी से ऊपर आए स्वर्गलोक में, और स्वर्गलोक में आपने आकर देवताओं की विजय दिलाई और असुरों का पराजय किया, तो आप बड़े महत्वपूर्ण हैं, महत्वशाली हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत करो। तो सिद्ध्यन्ति कर्म सुमहत्स्वपियन्नियोज्या, मतलब बड़े कामों को कोई व्यक्ति सिद्ध करता है तो ये उसका बड़प्पन नहीं है। मतलब इसमें वो देखो आप जो व्यंजना है वो कितनी भारी है, सिद्ध्यन्ति कर्म सुमहत्स्वपियन्नियोज्या संभावना गुणमवेहि तमीश्वराणा। अब शब्दों का जो प्रयोग है ना, जैसे आप वेद में देखते हो ना, आप कालिदास में देखोगे, अब संभावना शब्द का अर्थ क्या है? संभावना का साम शब्द हो सकना है। अब यहां जो प्रयोग है वो देखो, संभावना गुणम अव्यय ही तमीश्वराणा, मतलब उसने मुझे इस लायक समझा, मुझे उसने इस काम को लगाया, ये काम मैंने संपूर्ण सफलता से कर दिया। आप कहते हो कि मैंने कर दिया, मैं कहता हूं नहीं नहीं मैंने नहीं किया, ये असल में तो उसने किया जिसने मुझे इस योग्य
समझा।
समझा सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्य संभावना गुणमवे ही तमीश्वराणाम कथम वा भविष्य दरुणस्तमसाम विभेत्ता तम चेत सहस्र किरणों धुरिना करिष्यत। कहता ये अरुण जो है ना ये प्रकाश करता है। अरुण कौन?
सूर्य।
हाँ हाँ हाँ, अरुण जो है उसका सारथी है सूर्य का। अब वो रूपक है सारा का सारा। अब वो रूपक वैसे नहीं, हम तो वैसे तो रूपक मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन उस विज्ञान को आप समझोगे वेद से। जब ये आज वाला प्रकरण था ना भावयिता और भाव वाला, तो अश्व अरुण और सूर्य, तो अरुण को भी सूर्य से, हम सामान्य रूप से अरुण को सूर्य मान लेते हैं, लेकिन यहां तो नहीं है। कथम वा भविष्य दरुण तमसाम विभेदता, क्योंकि जो चीज पहले आ रही है वो बाद में आने वाली चीज की भिन्न है। तो आप क्रम देखो इनका, तो कथम वा भविष्य दरुण तमसाम विभेदता। अरे भाई ये अरुण जो है तम का विभेद करने वाला कैसे हो सकता था? तम चेत सहस्र किरणों धोरिना करिष्यत, यदि सूर्य ने उसे अपना सारथी न बनाया होता। तो अब यहां जो प्रयोग है शब्दों के, उनको यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो निरुक्त की कहने की जो शैली है, ढंग है, वो आपको गलत नहीं लगेगा। देखो एक एक उदाहरण इसी तरह का मेरे दिमाग में आता रहता है कई बार। वो कहता है, प्रकरण ये चल रहा है कि शिव जी को कहा कि वो असुर जो है बहुत तंग कर रहा है, आप इसको मारो। बोले नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि इसको वर तो मैंने ही दिया है, तो इसको मुझे मैं मारूं ये अच्छी बात नहीं है। तो कालिदास ने उसके लिए कहा, विष वृक्षों पर संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। अब ये असाम्प्रतम शब्द है, साम्प्रतम शब्द का अर्थ क्या होता है? अब कभी कभी, तो यहां वो कभी कभी अर्थ नहीं घटेगा, वहां है असाम्प्रतम अनुचितम। विष वृक्षों पर संवर्ध्य, यदि मेरे अपने हाथ से विष का पेड़ भी लगाया है उसे मैं काटूं ये शोभा नहीं देता। विष वृक्षों पर संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम, ये असाम्प्रतम शब्द का प्रयोग आप इस अर्थ में कैसे कर सकते हो जब तक कि इसका जो ये निरुक्त का तार्किक प्रयोग आपके मस्तिष्क में नहीं हो। मतलब आप ये मत समझो कि ये बात केवल वेद में है, जिसके पास भी जितनी अच्छी भाषा या जितना अच्छा ज्ञान है उसका शब्द प्रयोग भी उतना ही अच्छा होता है, और वो सामान्य आदमी उससे चमत्कृत होता है। हम एक वैसा ही शब्द प्रयोग करें उसको चमत्कार नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब ऐसा शब्द प्रयोग होते हैं तो अर्थ में चमत्कार आ जाता है, वो चमत्कार जो है ना आकर्षण का केंद्र होता है। तो इस दृष्टि से जब आप वेद को पढ़ते हैं तो सचमुच में वेद में कुछ अद्भुत है, ये बात निरुक्त के पढ़ने के बाद पता लगती है, और शायद ब्राह्मण के बाद कुछ ज्यादा लगती होगी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि मैं आपके साथ बैठता हूँ तो और तो मुझे कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, पर इतना लगता है कुछ खास तो है। मतलब ऐसा है ना, कुछ है, जैसे कोई मुझसे पूछता है ना ईश्वर के बारे में क्या, मुझे लगता है कुछ है, क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना तो भरोसा है कि कुछ है। तो ऐसे ही वेद के बारे में कि कुछ है तो जरूर इसमें, अब क्या है तो इनसे सुन लेना फिर बता देना, हम भी समझ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद
आचार्य जी का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। एक बार ओम का उच्चारण, सभी का धन्यवाद। ये एक मिनट, निश्चित क्या हुआ परीक्षाएं कब होंगी? शनिवार को। कितनी? अभी आज शुक्रवार है, ये तो 9 दिन ले रहे हैं आप, 8 दिन। ये तो ज्यादा हो जाएंगे। रविवार जाए ना जाए वो काल है, काल की गणना होती है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। आचार्य जी स्वामी जी कब करें? ठीक है शनिवार कर लें। चलो जी सभी कह रहे तो शनिवार ही कर लेते हैं,
सोमवार से
फिर सोमवार। तो मतलब 10 दिन की छुट्टी हो गई, ज्यादा लग रही है कुछ। चलो ठीक है जैसे आप लोगों की इच्छा। ठीक
धन्यवाद। उम्र चाहे कोई
जी,
यदि 80 साल का आदमी अध्यापक छात्र बन गया उसे छुट्टी बहुत अच्छी।
मेरे साथ ये घटना नहीं घटती आचार्य जी।
छात्र बन गए जो मनोवृत्ति करती है।
मेरे को तो एक दिन भी पाठ नहीं होता तो ऐसा लगता था आज द्रव्य का दुरुपयोग हो गया।